आगे सबक देखिए भाई, व मिसलु कौली का मा अहदुन खैरुम मिन का फइन्न नकिरत फी हा वकअत फी हय्यिज़िन नफी फअफादत उमूमल अफराद व शुमूलहा فتعينت وتخصصت فإنه لا تعدد في جميع الأفراد بل هو أمر واحد وكذا كل نكرة في الإثبات قصد بها العموم نحو تمرة خير من جرادة. بھئی گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ مبتدا کے اندر اصل ہے تقدیم بھئی، کہ مبتدا کو مقدم ہونا چاہیے، اور خبر کے اندر اصل جو ہے وہ تاخیر ہے کہ اس کو مؤخر ہونا چاہیے، اس لیے کیونکہ مبتدا ذات ہے یعنی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور خبر حال ہے یعنی حال پر دلالت کرتی ہے، اور ذات مقدم ہوتی ہے اپنے احوال پر، پہلے ذات کا تصور آتا ہے اور اس کے بعد اس کے احوال کا تصور کیا جاتا ہے بھائی. اور پھر اس پر اشکال ہوا کہ پھر تو فعل اور فاعل جو ہے، فعل پہلے ہے فاعل بعد میں ہے، اور وہ فعل فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے، اور فاعل مسند الیہ ہے وہ ذات ہے، اور ذات مقدم ہوتی ہے، حالانکہ یہاں تو فعل مقدم ہے اور ذات مؤخر ہے. تو اس کا جواب بھی میں نے بتلایا تھا کہ دراصل یہاں مانع موجود ہے، کہ یہاں فعل جو ہے وہ عامل ہے فاعل یا نائب فاعل کے اندر، اور عامل کا درجہ مقدم ہوتا ہے معمول کے مقابلے میں، اس لیے اس مانع کی وجہ سے یہاں پر حال کو مقدم کیا گیا اور ذات کو مؤخر کیا گیا، ورنہ اصل یہی ہے کہ ذات مقدم ہو اور حال مؤخر ہو بھائی. اور چنانچہ کہتے ہیں اسی وجہ سے فی داری زیدن یہ کہنا تو جائز ہے، کیونکہ اس کے اندر ہا ضمیر اگرچہ زید کو لوٹ رہی ہے جو لفظوں کے اعتبار سے مؤخر ہے، لیکن رتبے کے اعتبار سے وہ مقدم ہے کیونکہ مبتدا ہے. اور صاحبہا فی دار یہ کہنا ممتنع ہے یعنی جائز نہیں بھائی، اس لیے کیونکہ یہاں صاحبہا کے اندر ہا ضمیر جو ہے فی دار کے اندر جو ادار موجود ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے، اور وہ تو خبر کے مقام میں واقع ہے، تو لفظوں کے اعتبار سے بھی ادار مؤخر اور رتبے کے اعتبار سے بھی ادار مؤخر ہے کیونکہ خبر میں ہے بھائی. تو یہ اضمار قبل ذکر لازم آیا لفظاً بھی اور رتبتاً بھی، اور یہ جائز نہیں بھائی. اور پھر صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ مبتدا کے اندر دوسری اصل یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. معرفہ معرفت سے ہے جس کی آپ کو پہچان ہو، اور نکرہ نکارت سے ہے جس کی آپ کو پہچان نہ ہو بھائی. تو دیکھو مبتدا اور خبر ہم لے کر آتے ہیں، مبتدا کو معرفہ ذکر کرتے ہیں اور خبر کو نکرہ. مبتدا کو معرفہ اس لیے ذکر کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک بات بتلانے والے ہیں، تو عموماً اور اکثر جو بات بتلائی جاتی ہے وہ کسی جاننے والی چیز کی حالت بیان کی جاتی ہے، اور خبر آگے نکیرہ لائی جاتی ہے کیونکہ خبر کا آپ کو پتہ نہیں ہے. اگر خبر کا آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے تو پھر تو یہ خبر دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، تو اس لیے خبر کو نکیرہ لایا جاتا ہے بھائی کہ اس کی مخاطب کو پہچان نہیں ہوتی بھائی. تو چنانچہ کبھی کبھار نکیرہ جو ہے وہ بھی مبتدا بنتا ہے بشرطے کہ اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے بھائی. تو نکرہ بھی کبھی کبھار مبتدا بنتا ہے، لیکن یہ علل اطلاق مبتدا نہیں بنتا، یعنی ہر نکرہ مبتدا نہیں بنتا، بلکہ جب نکرہ کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے پھر اس کو مبتدا بنایا جاتا ہے. اور تخصیص کے چھ طریقے صاحب کافیہ نے ذکر کیے، جن میں سے دو طریقے ہم نے پڑھے تھے بھائی. پہلا طریقہ کیا تھا؟ تخصیص بصفت بھائی، والعبد مؤمن خیر من مشرک. اس مثال کے اندر عبد جو ہے وہ مبتدا ہے اور یہ نکرہ ہے، اور اس کے اندر آگے مؤمن جو صفت آئی، اس صفت نے اس کے اندر تخصیص پیدا کر دی اور اشتراک کو کم کر دیا. جب عبد مومن کہا جاتا ہے تو دیکھو کافر عبد اور کافر غلام اس سے نکل گئے بھائی، تو لہٰذا یہاں تخصیص صفت کی وجہ سے آئی، لہٰذا اس عبدن کا مبتدا بننا صحیح ہے. اور دوسرا مقام تھا ارجل فی الدار امی مرأۃ، तो ये तख्सीस का दूसरा तरीका था और इसका नाम है तख्सीस बिइल्मिल मुतकल्लिम भाई। और तख्सीस बिइल्मिल मुतकल्लिम वहां आती है जहां हमज़ा इस्तिफ़हाम आए अम मुत्तसिला के साथ, अम मुत्तसिला के साथ। तो यहां देखो मुतकल्लिम को इतना इलम है, मसलन उसने क्या सवाल किया, अराजुलुन फिद्दारी अम इमरातुन, कि उस घर में कोई आदमी है या कोई औरत, मालूम हो उसको इतना इलम है कि इन ही दो में से कोई एक है, कोई तीसरी चीज वहां नहीं। तो यह सवाल मुतकल्लिम तभी करता है जब उसको इतना पता हो कि इन्हीं दो चीजों में से एक उस घर के अंदर है। तो यहां आप देखो मुतकल्लिम को इलम है और मुतकल्लिम के इस इलम की वजह से यहां तख्सीस आ गई। क्या आ गई? तख्सीस आ गई। तो लिहाजा अब यह अराजुलुन फिद्दारी, इसमें रजुलुन नकेरा है और ये मुब्तदा बन रहा है, और अम इमरातुन, ये इमरातुन का आतफ रजुलुन पर है भाई, और मातूफ का वही हुक्म होता है जो मातूफुन आले का होता है। तो यहां ये रजुलुन मुब्तदा बन रहा है और नकेरा है, लेकिन इसके अंदर तख्सीस आ गई बिइल्मिल मुतकल्लिम, मुतकल्लिम के इलम की वजह से, लिहाजा इसका मुब्तदा बनना सही है भाई। तो यहां तख्सीस आ गई इल्म मुतकल्लिम की वजह से कि उसको मालूम है कि इन्हीं दो चीजों में से कोई एक चीज है, और लिहाजा इसका जवाब नाम या ला के साथ नहीं दिया जा सकता। नाम के साथ इसका जवाब नहीं दे सकते, इसलिए क्योंकि नाम का माना है हां। मसलन अराजुलुन फिद्दारी अमीम रातुन, आप जवाब में कहते हैं नाम कि हां इस घर में मर्द या औरत ही है, तो ये जवाब देने का फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि ये बात तो मुतकल्लिम को भी इलम है कि इन्हीं दो में से कोई एक है, तो वो तायीन के बारे में सवाल कर रहा है। तो नाम के साथ इसका जवाब नहीं दिया जा सकता और नीज ला के साथ भी जवाब नहीं दिया जा सकता, इसलिए क्योंकि अगर आप कहते हैं कि नहीं इन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो इस सूरत में तो मुतकल्लिम का इलम गलत हो जाएगा, हालांकि मुतकल्लिम को इलम है कि इन्हीं दो चीजों में से कोई एक चीज इस घर में है भाई। और फिर यहां एक तरकीब आई थी अय्युम मिनल अमरैनिल मालूमी, तो यहां अल अमरैन की सिफत मालूम आई थी, और मैंने आपको बतलाया था कि यह सिफत बिहाली मुतअल्लिकी ही है। सिफत दो किस्म पर है, एक सिफत बिहाली ही और एक सिफत बिहाली मुतअल्लिकी ही। सिफत बिहाली ही, यहां जमीर राजे है मौसूफ को, ऐ सिफत बिहालिल मौसूफी, यानी वो सिफत जिसमें मौसूफ की हालत बयान की जाए, और एक है सिफत बिहाली मुतअल्लिकी ही ऐ मुतअल्लिकिल मौसूफी, यानी वो सिफत जिसमें मौसूफ के मुतअल्लिक की हालत बयान की जाए भाई। और तो ये जो सिफत बिहाली ही है, ये लफ्जों में जिसकी सिफत होती है माना में भी उसी की सिफत, जानी रजुलुन आलिमुन, रजुलुन मौसूफ आलिमुन उसकी सिफत, तो लफ्जों में ये आलिमुन सिफत है रजुल की, और माना के एतबार से भी ये आलिम सिफत है रजुल की, वो रजुल ही आलिम है, कोई और आलिम नहीं। और कभी कभार सिफत जो है मौसूफ के मुतअल्लिक की हालत बयान करती है, जैसे जाअनी रजुलुन आलिमुन अबूहू। अब देखो यहां पर ये अबूहू फाइल है आलिमुन के लिए, और आलिमुन लफ्जों में तो सिफत है रजुल की, लेकिन माना के एतबार से ये सिफत है अबूहू की भाई। किसकी? अबूहू की, यानी मौसूफ के मुतअल्लिक की सिफत है भाई, मौसूफ के मुतालिक की सिफत है, यानी आलिम वो रजुल नहीं है बल्कि उसका बाप जो है वो आलिम है भाई। और मैंने बताया था कि ये जो आम सिफत होती है ये अपने मौसूफ के मुताबिक होती है चार चीजों में, यानी यूं कहो सिफत बिहाली ही अपने मौसूफ के मुताबिक होगी चार चीजों में। नंबर एक एराब, नंबर दो इफराद तस्निया और जमा, यानी अगर मौसूफ मुफरद है तो सिफत भी मुफरद, और मौसूफ तस्निया या जमा है तो सिफत भी तस्निया और जमा, और तीसरी चीज है तस्कीर व तानीस, मौसूफ मुजक्कर तो सिफत भी मुजक्कर, मौसूफ मुअन्नस तो सिफत भी मुअन्नस, और चौथी चीज जो है तारीफ व तनकीर, मौसूफ मारिफा तो सिफत भी मारिफा, मौसूफ नकेरा तो सिफत भी नकेरा भाई। तो ये जो आम सिफत है यानी सिफत बिहाली ही, ये अपने मौसूफ के मुताबिक होती है इन चार चीजों में, एराब में, इफराद तस्निया और जमा में, तस्कीर व तानीस में, और तारीफ व तनकीर में। जबकि सिफत बिहाली मुतअल्लिक ही वो हमेशा मुफरद रहेगी, मालूम है इफराद तस्निया और जामा में ये अपने मौसूफ के मुताबिक नहीं होगी, और नीज ये अपने फाइल के मुताबिक मुजक्कर या मुअन्नस आएगी। फाइल मुजक्कर तो ये सिफत भी मुजक्कर, वो मुअन्नस तो ये सिफत भी मुअन्नस, तो ये दो चीजों में अपने फाइल के मुताबिक होगी, इफराद तस्निया जामा और तस्कीर तानीस, और दो चीजों में अपने मौसूफ के मुताबिक होगी ये सिफत भी हाल मुतालिक ही, एक एआराब में और एक तारीफ तनकीर में। तो यहां पर भी आया था अयुम मिनल अमरैनिल मालूमी, अल अमरैन मौसूफ है और अल मालूम उसकी सिफत, तो देखो दोनों का एआराब एक है, दोनों मजरूर हैं, और नीज दोनों तारीफ और तनकीर में भी एक जैसे हैं, अल अमरैन मारिफा तो अल मालूम भी मारिफा, और दो चीजों में मुताबकत जरूरी नहीं। कौन सी? एक तो इफराद तस्निया और जमा में, देखो अल अमरैन तस्निया है और अल मालूम मुफरद है, और नीज तस्कीर और तानीस में भी ये मुताबकत जरूरी नहीं, जैसे यहां इसका फाइल कौनु अहदिहिमा आ रहा है और वो मुजक्कर है इसलिए मालूम का लफ्ज भी मुजक्कर है। भाई अब आइए आज के सबक पर। भाई व मिसलु कौली का मा अहदुन खैरुम मिन का फइन नकिरत फीहा वकअत फी हय्यिज़िन नफी फअफादत उमूम अल अफराद व शुमूलहा, ये तख्सीस का तीसरा तरीका आ गया। भाई इस तरीके का नाम है तख्सीस बिल उमूम। भाई ये तख्सीस बिल उमूम कहलाती है। पहला तरीका क्या था तख्सीस का? तख्सीस बिल सिफत। दूसरा तरीका था तख्सीस बिल इल्म अल मुतकल्लिम, और तीसरा तरीका जो है मा अहदुन खैरुम मिन का, इसको कहते हैं तख्सीस बिल उमूम, यानी उमूम के जरिए तख्सीस पैदा करना, एक चीज के अंदर उमूम पैदा कर देना, शुमूल पैदा कर देना कि वह अपने तमाम अफराद का इहाता कर ले। तो यह तख्सीस का तीसरा तरीका है, और क्या नाम है इसका? तख्सीस बिल उमूम। और यह तख्सीस बिल उमूम वहां आएगी कि जहां पर नकेरा तहत नफी वाके हो। गई देखो मा अहदुन खैरुम मिन का, इसके अंदर यह अहदुन मुबतदा है और खैरुम मिन का उसकी खबर है भाई, और अहदुन तो नकेरा है और नकेरा तो वैसे मुबतदा नहीं बनता जब तक उसमें तख्सीस ना आ जाए। तो यहां पर ये अहदुन पर जो ये जो मा हरफे नफी दाखिल हुआ इसने इसके अंदर तख्सीस पैदा कर दी, और तख्सीस किस तरीके से पैदा की? उमूम के जरिए, कि इसमें उमूम पैदा कर दिया भाई। तो जब भी नकेरा तहत नफी आए, जैसे यहां अहदुन नकेरा मा के तहत आया, उसके ऊपर मा दाखिल है, तो जब भी नकेरा तहत नफी आए तो वहां तख्सीस आ जाती है, या यूं कहें वहां उमूम आ जाता है। क्या आ जाता है? उमूम आ जाता है, जिसकी वजह से उसमें तख्सीस आ गई भाई। मसलन देखो भाई, मेरे सामने मसलन 20 अफराद मौजूद हैं भाई, और अब एक तालिब इलम मेरे पास आया, मैंने उस तालिब इलम से कहा अहदुम मिनहुम खैरुम मिनका, मेरे सामने कितने अफराद की जमात है? 20 अफराद की। अब एक और तालिब इलम आया, मैंने उस तालिब इलम से कहा अहदुम मिनहुम खैरुम मिनका, इन में से कोई एक फर्द ऐसा है जो तुमसे अफजल है, तुमसे बेहतर है भाई। तवज्जो है, अहदुम मिनहुम, इनमें से कोई एक, तायीन नहीं, इसके अंदर इश्तिबा है कि कौन सा वाला एक इस तालिब इल्म से बेहतर है, और कितने लोगों की जमात मेरे सामने है? 20 अफराद की। तो देखो पहले फर्द को ले लें, हो सकता है ये है वो एक जो इस तालिब इल्म से बेहतर है, तो एहतमाल है हो सकता है ये वाला फर्द हो। दूसरे फर्द को ले लें उस जमात के, उसमें भी एहतमाल है, हो सकता है ये वाला फर्द इस तालिब इलम से बेहतर है। तीसरे फर्द को ले लें, हो सकता है ये वाला फर्द तालिब इलम से बेहतर है। तो इसी तरह ये तमाम अफराद के अंदर ये एहतमाल मौजूद है कि हो सकता है ये वो वाला एक हो जो उस तालिब इलम से बेहतर है भाई। तो देखो अहदुम मिनहुम खैरुम मिनका, यहां देखो कोई हरफे नफी नहीं है, कोई हरफे अहदुम मिनहुम खैरुम मिनका, इनमें से कोई एक है जो खैरुम मिनका, जो आपसे बेहतर है भाई। तो इस अहदुन के अंदर 20 इहतमाल आ गए। मैंने कितने लोगों के एतबार से यह बात की? वो जो 20 अफराद मेरे सामने मौजूद हैं, मैंने उनके एतबार से कहा कि अहदुम मिनहुम खैरुम मिनका, कि इन 20 में से कोई एक ऐसा है जो आपसे अफजल है भाई। तो अब इस अहदुन में इश्तबा है, ये उनमें से हर एक पर सादिक आ रहा है, हर एक के अंदर यह इहतमाल है, हो सकता है ये वाला फर्ज जो है ये उस तालिब इलम के मुकाबले में बेहतर हो। तो इस अहदुन में कितने इहतमाल आ गए, 20 इहतमाल आ गए। तो ये नकेरा है भाई। और फिर मैं इस पर हरफ नफी ले आता हूं, मा अहदुम मिन हुम खैरुम मिन का, ये मिन हुम को भी अब जरा खत्म कर दें, मा अहदुन खैरुम मिन का, तवज्जो है, कोई एक भी तुमसे बेहतर नहीं है, कोई एक भी तुमसे बेहतर नहीं है भाई। अब देखो यहां यहां मैंने नकेरा पर हर्फ नफी दाखिल कर दिया, और नकेरा पर जब हर्फ नफी दाखिल हो तो वो उमूम का फायदा देता है, तो मैंने सब की नफी कर दी कि इनमें से कोई एक भी आपसे बेहतर नहीं है, तो सारे मजमूए की मैंने नफी कर दी। पहले इस अहदुन में कितने इहतेमाल थे, 20 इहतेमाल, अब सारे मजमूए की मैंने इकट्ठी नफी कर दी, अब यहां और कोई इहतेमाल नहीं, क्योंकि एक ही मजमूआ है, एक से ज्यादा मजमूए नहीं, तो सारों को मिला दिया तो एक मजमूआ बन गया। एक ही मजमूआ बनेगा कि कई मजमूए बनेंगे, जब सारों को इकट्ठा कर दिए एक मजमूए में तो एक ही मजमूआ बनेगा, तो एक ही मजमूआ बना, तो मा अहदुन खैरुम मिन का, इनमें से कोई एक भी आपसे बेहतर नहीं है। तो देखो मिन हैसुल मजमू मैंने सबसे नफी कर दी उस तालिब इलम के मुकाबले में बेहतर होने की। तो अब यहां देखो और कोई इहतेमाल नहीं, पहले अहदुन में कितने इहतेमाल थे, 20 इहतेमाल थे, यानी उसमें इश्तबाह था, पता नहीं ये वाला फर्द है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा है, कौन सा फर्द इस तालिब इलम के मुकाबले में बेहतर है। और जब मैंने कहा मा अहदुन खैरुम मिन का, कोई भी तुमसे बेहतर नहीं है, तो देखो सारों का मजमूआ बनाया और उस सारे की नफी कर दी कि इनमें से एक भी तुमसे बेहतर नहीं है। तो अब यहां देखो नकेरा तहता नफी आया, इसने उमूम पैदा कर दिया, तमाम अफराद से खैरुम मिनका की नफी हो गई कि इनमें से कोई एक भी आपसे बेहतर नहीं, अब यहां और कोई एहतेमाल नहीं, तो सारे एहतेमालात खत्म हो गए, सारे एहतेमालात खत्म हो गए। तो देखा उमूम आ गया, तमाम अफराद का इहाता हुआ और उन सब से नफी कर दी गई इस सिफत की। बात समझ में आ गई। तो नकेरा तहता नफी जब भी वाकई हो वो किस चीज का फायदा देता है, उमूम का फायदा देता है, और उसकी वजह से उसमें तख्सीस आ जाती है, और उस तख्सीस की वजह से फिर उसका मुब्तदा बनना सही है। तो मा अहदुन खैरुम मिन का, कोई एक भी तुमसे बेहतर नहीं है। देखिए भाई किताब पर कहते हैं, व मिस्लु कौलिका मा अहदुन खैरुम मिन का, और जैसे कि आपका कौल है मा अहदुन खैरुम मिन का, कि कोई एक भी तुमसे बेहतर नहीं है। भाई देखिए काफिया की इबारत है व मा अहदुन खैरुम मिन का, व मा अहदुन खैरुम मिन, और साहिब जामी ने दरमियान में व मिस्लु कौलिका, ये मिस्लु कौलिका लफ्ज भी निकाल लिया, बतलाना ये चाहते हैं कि ये मा अहदुन खैरुम मिन का इसका आतफ है माकबल में जो आया था वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन, उस पर है, और उससे पहले तो मिसल का लफ्ज था, वो तो मुजाफिले था मिसल के लिए, तो लिहाजा ये भी क्या है, मुजाफिले है मिसल के लिए, इसलिए उन्होंने यहां वह मिसलु कौली का लफ्ज निकाल दिया कि इसका आतफ उसी पर है और इस पर भी मिसलु का लफ्ज दाखिल हो रहा है। और नीस मिसल के बाद कौल का लफ्ज निकालते जा रहे हैं हर जगह, बतलाना ये चाहते हैं कि यहां ये जो मिसालें आ रही हैं ये लफ्ज मुराद हैं, यानी ये कौल की तावील में है, किस तावील में है, कौल की तावील में है, तो ये कौल असल में मुजाफिले है, क्या है देखो ना, वह मिसलु कौलिका मा अहदुन खैरुम मिन का, मैंने आपको बतलाया है कि काला जो है काला काला ये एक फाइल चाहता है और एक मफूल, कुल तो मैंने कहा, क्या कहा, आगे मफूल चाहिए भाई, वो जो आगे कलाम किया जाएगा वो दर असल इसका मफूल है भाई, कुल तो ली जैदीन मैंने जैद से कहा ए जरीब आमरान कि आमर की पिटाई करो, तो कुल तो फेल बा फाइल है, इसके अंदर ताज अमीर मरफू महलन इसका फाइल, ले जैदीन लाम जारा जैदीन मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतालिक किससे, कुल तो फेल से, याद रखो ये काला का सिला लाम आता है, जिसके साथ बात की जाए उस पर लाम दाखिल करते हैं, कुल तो ली जैदीन मैंने किससे कहा है, जैद से, मैंने जैद से ये बात की है तो उस पर लाम दाखिल करते हैं, तो ये ली जैदीन मुतालिक हुआ कुल तो के साथ, बात समझ में आ गई। तो क्या कहेंगे, ये लाम सिला है किसका, काला का। मैंने बताया था आपको कि ये जो हरूफ है जारा जिस फेल के साथ जुड़ते हैं, जिस फेल के साथ जुड़ते हैं ये उसका सिला कहलाते हैं, और हर फेल के मखसूस सिले होते हैं जो उसके साथ इस्तेमाल होते हैं, यानी हुरूफ जर्रा होते हैं जो उसके साथ इस्तेमाल होते हैं, और ये सिला बदलता जाए तो फेल का माना बदलता चला जाता है। चुनांचे आप लुगत उठाएंगे वहां भी आप देखेंगे एक फेल जिक्र होगा और आगे उसके कई मानी जिक्र होंगे, और हर माना में आप देखेंगे कि फेल के साथ उमूमन सिला बदलता जा रहा है, सिला बदलता जाएगा तो फेल का माना भी बदलता जाएगा। तो कुलतु लिजैदिन, ये लिजैदिन सिला है किसका, कुलतु का। और आगे मैंने क्या कहा, ए जरीब आमरन, ये जो पूरा जुमला है, जुमला इंशाइया है, अमर है ना जुमला इंशाइया, ये पूरा जुमला मफूल भी ही है कुलतु का। मैंने कहा, क्या कहा, एजरेब आमरान, ये एजरेब आमरान मकूला है और ये मफूल भी ही है कुलतु के लिए। तो मालूम हुआ काला का फेल एक फाइल चाहता है और एक मकूला यानी मफूल भी ही चाहता है। तो यहां पर भी आया व मिसलु कौली का, ये कौल मस्दर है और मस्दर भी अपने फेल की तरह अमल करता है, यानी अपने फाइल को रफा देता है और मफूल को नसब। लेकिन मैंने बताया है मस्दर के साथ फाइल या नाइब फाइल का जिक्र जरूरी नहीं, फेल या सिफत के सीगों के साथ तो फाइल या नाइब फाइल का जिक्र जरूरी है, लेकिन मस्दर के साथ फाइल या नाइब फाइल का जिक्र जरूरी नहीं। कभी जिक्र कर दिया जाता है मस्दर के साथ फाइल या नाइब फाइल को, और कभी जिक्र नहीं किया जाता, और फिर जब जिक्र किया जाए तो उमूमन मस्दर की इजाफत कर देते हैं अपने फाइल या नाइब फाइल की तरफ। तो यहां पर भी वह मिसलु कौली का, कौल मस्दर आया, और काफ जमीर जो है यह मजरूर महलन है, यह मुजाफिले है कौल के लिए, मिसलु कौली का जैसे कि आपका कौल है, और यह काफ जमीर यह माना के एतबार से फाइल है कौल के लिए, कौलू का आपका कौल, यानी यह बात आपने की है तो आप क्या हुए, इस कौल के फाइल हुए। वह मिसलु कौली का, कौल मस्दर मुजाफ, काफ जमीर मजरूर महलन मुजाफिल है, और यही काफ जमीर फाइल भी है भाई, तो ये इसका महल्ले करीब यह है कि यह मजरूर है मुजाफिल है, और महल्ले बईद यह है कि यह फाइल है कौल मस्तर के लिए। और आगे मा अहदुन खैरुम मिन का, यह पूरा जुमला यह मकूला है, यह मफूल भी ही है कौल मस्तर के लिए। तो कौल मस्तर अपने मुजाफिले और मफूल बिही से मिलकर ये मुजाफिले हुआ मिसल के लिए। तो मिसल का मुजाफ यानी कौल है भाई, तो कौल जब दाखिल कर दिया मा अहदुन खैरुम मिन का, तो ये मस्तर के हुक्म में हो गया, यानी मुफरद बन गया। क्या बन गया, मुफरद बन गया। तो साहिबे जामी बतलाना ये चाहते हैं के मिसल का मुजाफिल जो है मा अहदुन खैरुम मिन का नहीं है, बल्कि कौल है भाई, क्या है, कौल मस्तर है, तो ये मस्तर की तावील में इसको कर लिया। और नीज यहां आप ये भी कह सकते हैं कि मा अहदुन खैरुम मिन का, इससे लफ्ज मुराद है, क्या मुराद है, लफ्ज मुराद है भाई, और इसीलिए इसका तर्जमा नहीं किया जाता, तो यह हाजा लफ्ज की तावील में है। लिहाजा आप यूं भी कह सकते हैं कि वह मिसलु हाजल लफ्जी, कौल निकालने की जरूरत ही नहीं, कौल ने भी क्या किया था, कौल ने क्या फायदा दिया था, मा अहदुन खैरुम मिन का, इसको मुफरद की तावील में कर दिया था, यह सारा मकूला बन गया था किसके लिए, कौल के लिए, और असल मुजाफिल है यह मा अहदुन खैरुम मिन का नहीं है, बल्कि कौल है, और कौल तो मस्तर है मुफरद है। तो यानी बतलाना ये चाहते हैं कि ये जो मुजाफिल है पूरा जुमला नहीं है, बल्कि ये कौल मस्तर है जो मुफरद है भाई। और दूसरी तावील आप ये कर सकते हैं कि ये मा अहदुन खैरुम मिन का, इससे ये लफ्ज मुराद है, तो ये हाजा लफ्ज की तावील में हुआ, और ये हाजा लफ्ज को मुजाफिल बना दें मिसल के लिए, तो इबारत क्या बन गई, वह मिसलो हाजा लफ्ज, और जैसे कि ये लफ्ज है, ये दूसरी तावील हो गई। और तीसरी तावील ये कि इसको आलम की तावील में ले लें, जब लफ्ज बोलकर लफ्ज मुराद हो तो वो आलम की तावील में होता है, वो जो कलाम अरब में आता है मा अहदुन खैरुम मिन का, उसका नाम ही हमने क्या रख दिया, मा अहदुन खैरुम मिन का, तो ये आलम है, और आलम इसम होता है। बात समझ में आ गई। तो गोया तीन तरीके से आप इसको मुफरत की तावील में कर सकते हैं, या तो कौल के लिए इसको मकूला बना दें, कौल मस्तर मुफरत है, या यह हाजा लफ्ज की तावील में ले लें, यह भी मुफरत है, और या इसको आलम के तावील में ले लें तो भी ये मुफरद है। और आलम होने की अलामत यह है कि इसका तर्जमा नहीं किया जाता, जो आलम होता है उसका तर्जमा नहीं किया जाता। अच्छा, तो कहते हैं वह मिसलु कौली का मा आहदुन खैरुम मीन का, और जैसे कि आपका यह कौल है मा आहदुन खैरुम मीन का, यानी इसके अंदर भी नकेरा के अंदर तख्सीस आई है, और किस तरीके से आई है, तख्सीस बिल उमूम है भाई। फ़इन्न नकिरत फीहा वक़अत फी हय्यिज़िन नफ़ी, इसलिए क्योंकि नकिरा जो है इसके अंदर नफी के मकाम में वाक़े हुआ है। हय्यिज़ का माना मकान भाई, और जगह जगह। फ़इन्न नकिरत फीहा वक़अत फी हय्यिज़िन नफ़ी, इसलिए क्योंकि नकिरा जो है वो इस जुमले के अंदर वो वाक़े हुआ है हय्यिज़िन नफ़ी में, नफी के मकाम में, यानी नफी के महल में वाक़े हुआ है। नफी के महल में वाक़े होने का क्या माना, कि तहता नफी है, यानी इस पर हरफ नफी दाखिल हो रहा है। फअफादत उमूम अल अफराद व शुमूलहा, तो इस नकिरा ने फायदा दिया उमूम अफराद का और उनके शुमूल का, यानी यह आम हो गया, इसने अपने तमाम अफराद का इहाता कर लिया। इसने जब नकिरा तहता नफी आए तो उसमें उमूम आ जाता है, वह अपने तमाम अफराद का इहाता कर लेता है। इस पर यहां इश्काल होता है कि आपने क्या कहा कि यह तख्सीस के तीसरे तरीके का क्या नाम है, तख्सीस बिल उमूम भाई, तख्सीस बिल उमूम, हालांकि तख्सीस और उमूम ये तो एक दूसरे की जिद हैं, एक दूसरे के मुकाबिल हैं भाई। तख्सीस का माना तो है दीगर एहतमालात को कम करना, और उमूम का माना तो है अफराद को बढ़ा देना, यानी एहतमालात को बढ़ा देना कि और अफराद भी उसमें शामिल हो जाए। तो तख्सीस और उमूम तो एक दूसरे की जिद हैं, एक दूसरे के मुकाबिल हैं, तो उमूम के जरिए कैसे यहां पर तख्सीस आ गई, तो जवाब ये कि भाई तख्सीस का माना हमने जिक्र किया कि तख्सीस कहते हैं दीगर एहतमालात को कम करना या खत्म करना। तख्सीस किसे कहते हैं, दीगर एहतमालात को कम करना या खत्म करना, और जब नकेरा तहता नफी वाके होता है तो फिर दीगर एहतमालात बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो देखो तख्सीस आ गई बाई माना कि दीगर एहतमालात खत्म हो गए, जब नकिरा तहता नफी आया तो इसने उमूम का फायदा दिया, तमाम अफराद का मजमुआ बनाया और उस सारे की क्या कर दी, नफी कर दी, तो यहां उमूम आया और तमाम एहतमालात अब खत्म हो गए। तो बाई माना यहां पर तख्सीस आ गई कि दीगर एहतमालात खत्म हो गए, या दूसरे लफ्जों में यूं कहो कि जो तख्सीस है एक है नफ्स तख्सीस और एक है कमाल तख्सीस भाई। नफ्स तख्सीस जो है उसका माना है दीगर एहतमालात को कम करना, जैसे वला अब्द मुमिन खैरुम मिन मुशरिकिन, अब्द की सिफत मोमिन लाई गई तो इसने क्या किया, उसमें नफ्स तख्सीस पैदा कर दी, यानी दीगर एहतमालात कम कर दिए, उसमें एहतमालात कम कर दिए। आब्दुन मोमिनुन, अब ये आब्दे काफिर पर सादिक नहीं आएगा। तो देखो इश्तेराक कलील हो गया, तो एक है नफ्स तख्सीस, तो सिफत वगैरह से नफ्स तख्सीस आ जाती है, जबकि नकेरा जब तहतन नफी हो तो उसमें कमाल तख्सीस आ जाती है, यानी कामिल दर्जे की तख्सीस आ जाती है, यानी तमाम एहतमालात खत्म हो गए। एक थी नफ्स तख्सीस, नफ्स तख्सीस में क्या होता है, एहतमालात कम होते हैं, खत्म नहीं होते, और एक है कमाल तख्सीस के कामिल दर्जे की तख्सीस आ जाए, और वो ये कि एहतमालात कम ना हो बल्कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए भाई। और जब नकेरा तहता नफी आए तो यहां एहतमालात बिल्कुल ही खत्म हो गए। पहले देखो 20 अफराद थे, उनमें से हर एक के बारे में इश्तेबा था, पता नहीं ये वाला फर्द मुराद है, ये वाला, क्योंकि मैंने क्या कहा था अहद उम्मीन होम खैर उम्मीन का, तो उस अहद उनमें 20 इहतेमाल थे, लेकिन जब नकेरा तहता नफी आया अब उस सारे मजमुए की मैंने इकट्ठी नफी कर दी, अब देखो और कोई इहतेमाल है ही नहीं यहां, तो यहां कामिल दर्जे की तख्सीस आ गई। तो एक है नफ्स तख्सीस और एक है कमाल तख्सीस। नफ्स तख्सीस क्या है, दीगर एहतमालात को कम करना, और वो सिफत वगैरह के जरिए आती है, और एक है कमाल तख्सीस कि दीगर एहतमालात कम ना हो बल्कि बिल्कुल खत्म ही हो जाएं, और वो कब आती है, जब नकेरा तहतन नफी हो भाई। तो कहते हैं फैन नकिरा तफी हा वक़ात फी हय्यिज़िन नफी, इसलिए क्योंकि नकिरा इसके अंदर जो है वो नफी के मकाम में वाक़े है यानी तहत नफी है। फअफादत उमूमल अफरादी व शुमूलहा, तो इसने अफराद के उमूम और उनके शुमूल का फायदा दिया कि तमाम अफराद को अब यह शामिल हो गया। फतअय्यनत व तखस्ससत, तो ये मुतअय्यन हो गया। व तखस्ससत, और इसने तख़सीस हासिल कर ली। फतअय्यनत व तखस्ससत का एक माना है भाई, और ये फतअय्यनत के बाद जो व तखस्ससत आया ये अत्फ़े तफसीरी कहलाता है। बाज़ औक़ात एक लफ्ज़ जिक्र किया जाता है और फिर मुसन्निफ उसका माना भी बतलाना चाहते हैं, तो एक तरीका तो यह है कि अय हर्फे तफसीर जिक्र किया जाए, यूं कहा जाए फतअय्यनत अय तखस्ससत, कि वो मुतअय्यन हुआ यानी उसमें तख़सीस आ गई। मुतअय्यन होने का यहां क्या माना, तख़सीस आ जाना। और दूसरा तरीका यह है कि उसके ऊपर आतफ कर दिया जाए भाई, याद रखो आतफ में मातूफुन आले और होता है और मातूफ और, लेकिन ये जो अत्फ तफसीरी के अंदर दोनों एक ही चीज होते हैं, वो जो आगे मातूफ आता है वो उसी मातूफुन आले की तफसीर करता है, उसका माना बयान करता है। तो यहां पर ये जो वतखससत आया इसने उसी तायनत के माना की तफसीर की भाई, उसका माना बयान कर दिया, तो ये क्या है, अत्फ तफसीरी है भाई। तो कहते हैं फतअय्यनत व तखस्ससत, तो वो नकिरा जो है वो मुतअय्यन हो गया और उसने तख़सीस हासिल कर ली। मुतअय्यन हो गया यानी यूं कहें, यूं कहें, जब मैंने कहा मा अहदुन खैरुम मिन का, कोई एक भी आपसे बेहतर नहीं है। देखो ये सारे मजमुए पर हुक्म लग गया, यानी हर हर फर्द पर हुक्म लग गया। ये वाला फर्द भी आपसे बेहतर नहीं, दूसरा फर्द लिया ये भी आपसे बेहतर नहीं, तीसरा लिया ये भी आपसे बेहतर नहीं, चौथा लिया उस पर भी ये हुक्म कि आपसे बेहतर नहीं। तो वही माना इसमें तायुन आ गया, ये मुतायन हो गया नकेरा कि इसमें हर हर फर्द पर ये हुक्म लग रहा है। पहले अहदुम मिनहुम खैरुम मिन का, किसी एक पर यह हुक्म लग रहा था और उस एक का भी पता नहीं था कि कौन सा वाला एक है, और अब मा अहदुन खैरुम मिन का, अब इसने इसमें उमूम आया और इसने हर हर फर्द पर यह हुक्म लगा दिया कि कोई भी आपसे बेहतर नहीं है। तो जब हर हर फर्द पर हुक्म लग गया तो तायीन आ गई, यानी अब कोई और इहतमाल है ही नहीं भाई। तो कहते हैं फतअय्यनत, तो वो नकिरा मुतअय्यन हो गया। व तखस्ससत, और उसने तख़सीस हासिल कर ली। फइन्नहु ला तअद्दुद फी जमीअल अफराद बल हुवा अमरुन वाहिद, इसलिए क्योंकि जमीअ अफराद के अंदर तअद्दुद नहीं है बल्कि वो एक ही अमर है, एक ही चीज है भाई। जब नकिरा तहत नफी आए तो ये उमूम का फायदा देता है और जमीअ अफराद पर वह हुक्म लग जाता है, और जमीअ अफराद ये तो एक ही चीज है। जमीअ अफराद एक हैं या एक से ज्यादा हैं, एक ही मजमुआ है ना कि कई मजमुए हैं। जब तमाम अफराद का आपने कह दिया तो तमाम अफराद का तो एक ही मजमुआ बनेगा, अगर और मजमुए बनाते हैं तो वो तमाम अफराद के नहीं हो सकते। हम तो क्या कह रहे हैं, तमाम अफराद का मजमुआ, और वो एक ही हो सकता है भाई। तो कहते हैं फइन नहु ला तअद्दुद फी जमीअल अफराद, इसलिए क्योंकि तमाम अफराद के अंदर कोई तअद्दुद नहीं, यानी वहां शुमार नहीं है, वो एक ही है। बल हुआ अमरुन वाहिदुन, बल्कि वो एक ही अमर है। वकदा कुल्लु नकिरतिन फिल इस्बात कुसिद बिहल उमूम, और इसी तरह हर ऐसा नकिरा जो इस बात के अंदर आए और कुसिद बिहल उमूम, उसके जरिए उमूम का इरादा किया जाए। भाई मतन में तो आया मा अहदुन खैरुम मिन का, मालूम हुआ नकिरा तहत नफी जब वाके हो तो वो उमूम का फायदा देता है और फिर उसका मुब्तदा बनना सही। आगे साहिब जामी एक और फायदा आपको बतला रहे हैं कि ये सिर्फ तहत नफी होने में ऐसा नहीं है, बल्कि मकाम इस बात के अंदर भी कभी नकिरा आए और उस नकिरा के जरिए उमूम का इरादा किया जाए, किसी खास फर्द का इरादा नहीं बल्कि उमूम का इरादा किया जाए, तो उसका मुब्तदा बनना भी सही है, उसमें भी तख़सीस बिल उमूम आ गई। तो कहते हैं वकदा कुल्लु नकिरतिन फिल इस बात कुसिद बिहल उमूम, और इसी तरह हर ऐसा नकिरा जो इस बात में हो यानी मकाम इस बात में हो उस पर कोई हर्फ नफी वगैरह दाखिल ना हो। तो हर ऐसा नकेरा जो इस बात में हो, कुसीदा भी हल उमूम, उसके जरिए उमूम का इरादा किया जाए, नहवु तमरतुन खैरुम मिन जरादतिन, जैसे कि ये कौल है भाई, तमरतुन खैरुम मिन जरादतिन। तमरा खजूर को कहते हैं भाई, और जरादा, जरादा याद रखो इसको टिड्डी कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, टिड्डी, और फारसी में इसको मुलख कहते हैं, मुलख, और पश्तो में इसको मलख कहते हैं। तो ये हशरात की कबील में से है भाई ये टिड्डी, और ये उछल उछल कर चलती है भाई, और इसकी मुख्तलिफ अनवा और अकसाम होती हैं, बाज बहुत छोटी होती हैं, बाज बड़ी, हत्ता के बाज ये उंगली के बराबर बड़ी होती हैं भाई, उंगली के बराबर बड़ी होती हैं, और फिर बाज औकात ये जो टिड्डियां हैं ये फसलों पर हमला आवर होती हैं भाई, और ये लाखों करोड़ों की तादाद में होती हैं, और जिस इलाके के अंदर ये आ जाएं पूरे के पूरे इलाके की फसलों को तबाह कर देती हैं भाई। ये फसलों पर इस तरह उतरती हैं जैसे कोई बादल उतर रहा हो भाई, मैंने बताया करोड़ों की तादाद में होती हैं, और फिर ये इतनी ज्यादा होती हैं जिन जिन खेतों पर बैठती चली जाएं, एक आध दिन में वो पूरा पूरा खेत, पूरा पूरा दरख्त बिल्कुल साफ कर देती हैं, और फिर वहां से उड़े अगले खेतों पर और अगले खेतों पर, तो जिस इलाके में ये आए वहां तबाही मचा देती हैं, सारी फसलें खत्म कर देती हैं, और किसान बेचारे बेबस होते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते भाई। समझ में आया? क्योंकि इनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि इनसे बचने की कोई सूरत नहीं, और ये कोई उंगली के लगभग बड़ी होती हैं ये जो फसलों पर हमला आवर होती हैं, और फिर लोग इनको शिकार करते हैं भाई, इनका खाना जायज है, ये हलाल है भाई, लोग इनका शिकार करते हैं और बोरियों में भर भर कर इनका शिकार करते हैं, इतनी ज्यादा होती हैं, और इनको पकाकर खाते हैं, लेकिन बहरहाल उस इलाके के अंदर वो तबाही मचा देती हैं, सारी फसलें, सारे दरख्त पौधे वगैरह सब कुछ ये खा जाती हैं, खत्म कर देती हैं वो। और ये पिछले साल पाकिस्तान के अंदर भी बाज इलाकों के अंदर ये हमला आवर हुई थी और बहुत ज्यादा नुकसान किया, लेकिन अल्लाह ताला ने फजल फरमाया और फिर ये काबू में आ गई और इनको खत्म कर दिया गया। तो इसको टिड्डी कहते हैं भाई, और अरबी में जरादतुन कहते हैं। नहवु तमरतुन खैरुम मिन जरादतिन, तमरतुन एक खजूर भी, खैरुम मिन जरादतिन वो टिड्डी से बेहतर है, तमरतुन खैरुम मिन जरादतिन एक खजूर भी टिड्डी से बेहतर है। ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है भाई। वाकया ये पेश आया कि एक मरतबा हिम्स के कुछ लोग हज के लिए आए भाई। हिम्स हा मीम सौद भाई, ये हिम्स इराक के अंदर एक शहर है और दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक शहर भाई। तो वहां के कुछ लोग हज के लिए आए भाई, बड़ा लंबा तवील सफर भाई। आजकल तो अल्लाह ने आसानियां फरमा दी, उस जमाने में तो पैदल सफर होते थे या ऊंटों वगैरह पर, तो वो लोग हज के लिए आ रहे थे, रास्ते में इसी तरह किसी जगह पर बहुत ज्यादा टिड्डियां थी, तो इन्होंने भी उन टिड्डियों का शिकार किया और उनको खाया भाई। बाद में ख्याल आया कि एहराम के अंदर तो ये शिकार मना था और हमने इन टिड्डियों का शिकार किया है। याद रखो एहराम के अंदर इंसान पर बहुत सी पाबंदियां आयद हो जाती हैं, वो अपने बाल नहीं काट सकता, वो अपने नाखून नहीं काट सकता, वो खुशबू नहीं लगा सकता, वो बीवी के करीब नहीं जा सकता, और इसी तरह शिकार खेलना भी उसके लिए मना है कि वो अल्लाह के दरबार में हाजिरी के लिए जा रहा है, हज या उमरे के लिए जा रहा है, एहराम बांधा हुआ है, तो अब उसके लिए जायज नहीं कि किसी भी चीज को किसी भी दर्जे में तकलीफ पहुंचाए, लिहाजा शिकार से भी मना कर दिया जाता है। तो ये लोग बाद में परेशान हुए कि एहराम की हालत में तो शिकार मना था और हमने तो ये टिड्डियां शिकार करके खा ली, अब क्या करें? तो चुनांचे एक फकीह से मसला पूछा, उन्होंने फरमाया कि तुमने एहराम की हालत में जिनायत की है, एहराम की हालत में तो शिकार मना है, तुम्हें हर टिड्डी के बदले एक दिरहम देना चाहिए भाई, हर टिड्डी के बदले एक दिरहम देना चाहिए। अब देखो मैंने बताया लोग तो बोरियां भर भर कर इनका शिकार करते हैं, तो इनमें से हर आदमी पर पता नहीं कितने ही दिरहम आ गए भाई, जिन्होंने भी उनको शिकार किया था और खाया था। बाद में ये लोग हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो से मुलाकात हुई तो उनसे जिक्र फरमाया कि हजरत इस तरह हमने टिड्डियों का शिकार किया था तो अब क्या करें, हमें तो बास फुकहा ने यह फतवा दिया कि हर टिड्डी के बदले एक दिरहम तुम्हें सदका करना पड़ेगा। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि ए अहले हिम्स, मालूम होता है तुम्हारे पास बहुत ज्यादा दिरहम है भाई। समझ में आया, ये तो हर आदमी पर ही बीसियों दिरहम बल्कि सैकड़ों दिरहम आ जाएंगे। तो फिर उस मौके पर आपने ये तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, तमरतुन खैरुम मिन जरादतिन, यानी एक खजूर भी टिड्डी के मुकाबले में बेहतर है। यानी माना यह है कि हर टिड्डी के बदले तुम्हें एक खजूर या उसके मिसल सदका करना पड़ेगा भाई। तो अब देखो हुक्म में कितनी आसानी आ गई भाई। तो यह हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है और उनका यह फतवा है भाई, तमरतुन खैरुम मिन जरादतिन, एक खजूर भी टिड्डी से बेहतर है भाई। देखो हुक्म में कितनी नरमी आ गई, पहले कितने दिरहम थे और अब तो मेरा ख्याल एक आध दिरहम के अंदर ही सारे अपनी अपने सदका पूरा अदा कर सकते हैं, उतनी खजूरें या उसके मिसल भाई। तो अब देखो इस मिसाल के अंदर तमरतुन ये मुब्तदा बन रहा है और ये नकेरा है और ये मकाम इस बात में है, इसके ऊपर कोई हरफ नफी वगैरह दाखिल नहीं, और नीज इस तमरतुन के जरिए उमूम का इरादा किया गया है, कोई खास तमरा मुराद नहीं, बल्कि हर तमरा को यह हुक्म शामिल है, यानी हर खजूर जो है वो टिड्डी के हर फर्द से बेहतर है भाई। तो लिहाजा यहां भी इस नकेरा का मुब्तदा बनना सही है। और याद रखना ये जो मिसाल साहिब काफिया ने जिक्र की, मा अहदुन खैरुम मिन का, ये बनु तमीम की लुगत पर उनकी जुबान पर ये मिसाल मबनी है। बनु तमीम अरब का एक बड़ा कबीला है, तो ये उनकी लुगत है, उनकी जुबान है, मा अहदुन खैरुम मिन का। इसके अंदर याद रखो ये मा मुशाबे भी लैसा है, और बनु तमीम के नजदीक ये मा अमल नहीं करता, लिहाजा अहदुन ये मुबतदा है और खैरुम मीन का उसकी खबर है भाई, क्योंकि बनु तमीम के नजदीक ये मा अमल नहीं करता। जबकि कबीले कुरैश और जो अहले हिजाज वगैरह हैं बाकी अरब, उनके नजदीक ये मा मुशाबे बिलेसा अमल करता है और ये अपने इसम को रफा देता है और खबर को नसब भाई। लिहाजा बाकियों के नजदीक इस जुमले को यूं बोलेंगे, मा अहदुन खैरम मिन का, यहां तो खैरुन मरफू है लेकिन बाकी अरब वालों के नजदीक इसको कैसे पढ़ेंगे, मा अहदुन खैरम मिन का, खैरम मिन का। और इस सूरत में ये मा मुशाबे भी लैसा है, अहदुन इसका इसम है और खैरम मिन का ये इसकी खबर है, क्योंकि मा मुशाबी बिलैसा अपने इसम को रफा देता है और खबर को नसब देता है। और फिर इस सूरत में इस मिसाल को यहां जिक्र नहीं किया जा सकता, इसलिए क्योंकि यहां बहस चल रही है वो मुब्तदा जो नकेरा हो भाई, वो मुब्तदा जो नकेरा हो और तहतन नफी वाके हो, जबकि उनके नजदीक तो ये मा मुशाबी बिलैसा इसके अंदर आमिल बन गया। अब ये अहदुन को मुब्तदा नहीं कहेंगे बल्कि ये मा मुशाबे बिलैसा का इसम है और खैरम मिन का ये मा मुशाबे बिलैसा की खबर होगी भाई। तो इसलिए साहिब काफिया ने बनु तमीम की जुबान के मुताबिक, उनकी लुगत के मुताबिक ये मिसाल जिक्र की कि उनके नजदीक तो यह मा अमल करता ही नहीं, तो मां के दाखिल होने से पहले जैसे अहदुन मुब्तदा था और खैरुन उस मुब्तदा की खबर थी, तो मां के दाखिल होने के बाद भी ये अहदुन उसी तरह मुब्तदा कहलाएगा और खैरुम मिन का उसकी खबर कहलाएगी। तो ये मिसाल बन गई वो मुब्तदा जो नकेरा है और तहतन नफी वाकई है भाई। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, कहते हैं वह मिसलू कौलिहिम शर्रुन अहर रजा नाबिन, और जैसे कि अरबों का कौल है शर्रुन अहर्रा जानाबिन, ये तख्सीस का चौथा तरीका आ गया भाई, और इसका नाम है तख्सीस बिल उदूली मिनल जुमलतिल फेलियति इलल जुमलतिल इस्मिया, जुमला फेलिया से उदूल करना किसकी तरफ, जुमला इस्मिया की तरफ। देखो शर्रुन अहर्रा जानाबिन, असल में ये शर्रुन मुअखर था, अहर्रा मुकद्दम था, अहर्रा शर्रुन जानाबिन, ये शर्रुन क्या था, अहर्रा से मुअख्खर था, अहर्रा शर्रुन जानाबिन। तरकीब क्या थी, तरकीब सुनो भाई, अहर्रा फेल, आगे शर्रुन है, उसको फाइल ना बनाए बल्कि उसको फाइल से बदल बना लें। तो अहर्रा के अंदर हुआ जमीर मरफू महलन इसका फाइल, तवज्जो है, और आगे शर्रुन जो है वो इस हुआ जमीर से बदल है। और आप जानते हैं कि मुबदल मिनहू और बदल में से असल मकसूद जो होता है वो बदल होता है। मुबदल मिनहू को वैसे ही बतौर तमहीद के जिक्र किया जाता है। तो असल कलाम क्या था? अहर्रा शर्रुन जानाबिन, अहर्रा फेल, हुआ जमीर इसके अंदर मरफू महलन, मुबदल मिनहू वो फाइल है लेकिन आगे बदल को भी इसके साथ जोड़ना है, और शर्रुन मरफू लफजान ये बदल, मुबदल मिनहू अपने बदल से मिलकर ये फाइल हुआ किसके लिए? अहर्रा फेल के लिए। और जानाबिन ये जा मुजाफ नाबिन मुजाफोन इले, जैसे जू माल, भाई जू माल का क्या माना? माल वाला। तो हालत रफी में कहते हैं जू माल, हालत नस्बी में जा माल, और हालत जरी में जी माल कहते हैं। तो यहां पर भी जा नाबिन ये जा मनसूब है, ये मफूल भी ही है अहर्रा के लिए भाई। और जा मनसूब लफजान मुजाफ, नाबिन मजरूर लफजान मुजाफिले, मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर ये मफूल भी ही हुआ अहर्रा के लिए। तो अहर्रा शर्रुन जानाबिन, फेल अपने फाइल और मफूल भी ही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। और फिर ये जो शर्रुन जो बदल था, शर्रुन जो बदल था फाइल से, और बदल मैंने बताया वो मकसूद होता है, तो वो भी गोया माना के एतबार से फाइल था भाई। फिर ये जो फाइल था माना के एतबार से यानी शर्रुन, इसको अहर्रा पर मुकदम कर दिया गया, तो कलाम क्या बन गया? शर्रुन अहर्रा जानाबिन। तवज्जो है भाई। सवाल ये कि अहर्रा के अंदर हुआ जमीर को आपने फाइल बनाया और शर्रुन को उससे बदल बनाया, बल्कि आप शर्रुन को फाइल बना देते, क्या करते हैं? शर्रुन को फाइल बना देते अहर्रा शर्रुन। तो जवाब याद रखना कि भाई फाइल को फेल पर मुकदम नहीं किया जा सकता। अगर शर्रुन को फाइल बनाते तो फाइल को फेल पर मुकदम नहीं किया जा सकता, फाइल हमेशा फेल के बाद आता है, और हमने तो इसको क्या करना है? मुकदम करना है। लिहाजा इसको फाइल ना बनाओ बल्कि इसको बदल बना दो। आप ये लफ्जन फाइल नहीं है बल्कि मानन फाइल है, माना के एतबार से फाइल है, और फाइल मानवी को तो फेल पर मुकदम किया जा सकता है, फाइल लफ्जी को फेल पर मुकदम नहीं किया जा सकता, लेकिन फाइल मानवी को मुकदम किया जा सकता है। तो चुनाचे इसलिए शर्रुन को मुकदम कर दिया गया। तो कलाम क्या बन गया? शर्रुन अहर्रा जानाबिन, शर्रुन अहर। और याद रखो अहर्रा, अहर्रा इहरार कहते हैं कुत्ते को भोंकवाना, कुत्ते को भोंकने पर मजबूर करना। और जानाब, नाब याद रखो ये कचली के दांत को कहते हैं, नाब कहते हैं कचली के दांत को भाई, कचली के दांत को, और इसकी जमा अनियाब आती है। कचली का दांत, अगर आपने अपने दांतों पर गौर किया हो, सामने के चार दांतों को छोड़कर उनके साथ दाएं बाएं जो दांत हैं ऊपर नीचे वो नोकदार हैं भाई, इनको कचली के दांत कहते हैं उर्दू में, और अरबी में इनको नाब कहते हैं, नाब, और इसकी जमा अनियाब आती है। तो जू नाब का क्या माना? कचली के दांत वाला, कचली के दांत वाला। तो जू माल का क्या माना था? माल वाला। तो जू नाब का क्या माना हुआ? कचली के दांत वाला, कचली के। और याद रखो इससे मुराद है कुत्ता। जू नाब किसको कहते हैं? कुत्ते को भाई। आपने अगर गौर किया हो भाई, ये हैवानात जो हैं, कुछ हैवानात ऐसे हैं जो घास वगैरह और सब्जी खाते हैं, और इनके तमाम दांत हमवार होते हैं, चूंकि इन्होंने घास और सब्जी खानी है और उसके लिए हमवार दांतों की जरूरत थी, लिहाजा इसलिए अल्लाह ने उनको हमवार दांत दे दिए। चुनाचे गाय बैल बकरी वगैरह इन सब के दांत हमवार हैं, इनका एक भी दांत नोकदार नहीं, जबकि कुछ हैवानात ऐसे हैं जो गोश्त खोर हैं, गोश्त खाने वाले हैं, उनको नोकदार दांतों की जरूरत थी ताकि उसके जरिए वो शिकार कर सकें और गोश्त को चीर फाड़कर खा सकें, तो उनको अल्लाह ने नोकदार दांत दिए। चुनांचे आप देखें ये कुत्ता बिल्ली शेर वगैरह इन सब के तमाम दांत नोकदार होते हैं, इनका एक दांत भी हमवार नहीं होता, जबकि इंसान को अल्लाह ताला ने दोनों तरह के दांत दिए हैं, हमवार दांत भी और नोकदार दांत भी। इसमें इशारा है इस बात की तरफ कि ये सब्जी भी खा सकता है और गोश्त भी खा सकता है भाई। बात समझ में आ गई। बाज लोग दुनिया में ऐसे हैं, वो कहते हैं कि ये गोश्त हमें खाना ही नहीं चाहिए, ये गोश्त हमारे अंदर हैवानियत पैदा करता है और इसी की वजह से लोग एक दूसरे पर जुल्म करते हैं। तो उनके लिए ये आसान जवाब है कि देखो अल्लाह ने हमें दोनों तरह के दांत दिए हैं, इसके जरिए इशारा है कि इंसान सब्जी भी खा सकता है और गोश्त भी खा सकता है। और नीज हमवार दांत इंसान के ज्यादा हैं और ये नोकदार दांत सिर्फ चार हैं, चार हैं, दो दाएं तरफ और दो बाएं तरफ ऊपर नीचे भाई, तो ये सिर्फ चार हैं। शायद इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि इंसान के लिए ज्यादा गोश्त खाना बेहतर नहीं, ज्यादा गोश्त खाना बेहतर नहीं, ज्यादा वो सब्जी वगैरह खाए और गोश्त भी खाए लेकिन कम खाए भाई। चुनांचे आजकल डॉक्टर भी कहते हैं भाई कि दिल वगैरह की जो तकालीफ होती हैं, बीमारियां होती हैं, ये ज्यादा गोश्त वगैरह खाने की वजह से फिर होती हैं भाई। हां जो सब्जियां वगैरह खाता है ज्यादा, ज्यादा सब्जियां वगैरह खाए और गोश्त कम खाए तो फिर वो इन बीमारियों से बचा रहता है भाई। तो गोश्त तो अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, इसके मुकाबले की तो कोई चीज खाने की नहीं है, लिहाजा इंसान पसंद यही करता है कि ज्यादा गोश्त खाए, लेकिन बहुत ज्यादा गोश्त भी पसंदीदा नहीं भाई, एतदाल के दर्जे में होना चाहिए। अच्छा, तो यहां बात चल रही थी शरुन अहर्रा जानाबिन, तो देखो असल में यह क्या था, अहर्रा शरुन जानाबिन, फिर इस शरुन को क्या कर दिया गया, मुकदम कर दिया गया। पहले क्या था, अहर्रा शरुन जानाबिन, शर ने कुत्ते को भोंकवाया, शर ने कुत्ते को भोंकने पर मजबूर किया, फिर इस शरुन को मुकदम कर दिया गया। और आपने जाब्ता पढ़ा है तकदीम मा हकहु ताखीरो, कि मुकदम करना उस चीज को जिसका हक क्या था कि उसको मुअख्खर किया जाए, युफीदुल हसरा वल कसरा व तखसीसा, यह हसर कसर और तखसीस का फायदा देता है। हसर कसर तखसीस तीनों का एक माना है, हसर आ जाए या कसर आ जाए या तखसीस आ जाए, तो समझ जाए ये सब का माना है तखसीस भाई, इन सब का क्या माना है, तखसीस। तो लिहाजा जब शरुन को मुकदम किया गया तो तकदीम मा हक़हु ताखीर युफीदुल हसर वल कसर व तखसीस, किसी चीज को जब मुकदम कर दिया जाए हालांकि उसका हक मुअख्खर करना था तो वो फिर तखसीस का फायदा देता है। तो यहां तखसीस आ गई, क्या आ गई, तखसीस आ गई। अब माना क्या, पहले क्या माना था, अहर्रा शरुन जानाबिन, शर ने कुत्ते को भोंकवाया, और अब शरुन मुकदम हो गया, अब माना होगा शर ही ने कुत्ते को भोंकवाया, तो यहां हसर आ गया, कसर आ गया, यानी तखसीस आ गई भाई। तो ये शरुन अहर्रा जानाबिन, ये इसी तरह है जैसे कोई शख्स ये कहे मा अहर्रा जानाबिन इल्ला शरुन, मा अहर्रा जानाबिन, मा अहर्रा जानाबिन, नहीं भोंकवाया कुत्ते को इल्ला शरुन, मगर किसने, शर ने। तो जैसे मा और इल्ला किस लिए आते हैं, हसर के लिए आते हैं, तो यहां पर भी हसर वाला माना है। तो शरुन अहर्रा जानाबिन, इसका क्या माना, शर ही ने कुत्ते को भोंकवाया है, और मा अहर्रा जानाबिन इल्ला शरुन, मा और इल्ला के साथ हो उसका भी यही माना कि शर ही ने कुत्ते को भोंकवाया है। मालूम हुआ ये जो मतन में जुमला आया शरुन अहर्रा जानाबिन, ये किस माना में है, मा अहर्रा जानाबिन इल्ला शरुन के माना में है, यानी जैसे उसके अंदर तखसीस है मा और इल्ला की वजह से, यहां पर भी तकदीम मा हक़हु ताखीर की वजह से तखसीस है भाई। यहां एक और बात याद रखना, इन्होंने आपको क्या कहा कि नकेरा तभी मुबतदा बनेगा जब उसमें तखसीस आ जाए, नकेरा महज मुबतदा नहीं बन सकता, नकेरा कब मुबतदा बनेगा, जब उसमें तखसीस आ जाए, तखसीस आ जाए। तो सवाल पैदा होता है कि कामा रजुलुन, कामा रजुलुन, यहां पर कामा फेल है और रजुलुन उसका फाइल है, और रजुलुन नकेरा महज है और नकेरा महज पर कियाम का हुक्म लगाया जा रहा है, फिर तो इस रजुलुन नकेरा महज को भी फाइल नहीं बनना चाहिए। जैसे नकेरा महज जुमला इस्मिया में मुस्नद इलैह नहीं बन सकता यानी मुबतदा नहीं बन सकता, इसी तरह जुमला फेलिया के अंदर मुस्नद इलैह क्या होता है, फाइल या नाई फाइल, तो उसको भी नकेरा महज नहीं होना चाहिए। जब रजुलुन कामा जायज नहीं तो कामा रजुलुन भी जायज नहीं होना चाहिए, इश्काल समझ में आ रहा है। तो उसका जवाब देते हैं उलमाए नहव कि हां बात ऐसी ही है, نہ کہہ رہے ہیں محض کو مسند الیہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن قام رجلن کے اندر رجلن فاعل بن سکتا ہے، اس لیے کیونکہ جب آپ فعل ذکر کرتے ہیں، مثلا آپ نے کیا کہنا ہے قام رجلن، تو جب آپ نے قام کہا تو اس قام نے آگے آنے والے رجل میں تخصیص پیدا کر دی، آپ نے کہنا کیا ہے قام رجلن، ابھی آپ نے رجلن کہا نہیں، لیکن جیسے ہی قام کہا آگے رجلن میں تخصیص آ گئی، جب تخصیص آ گئی اب اس نکرہ کا مبتدا بننا صحیح ہے. بھئی کیسے اس کے اندر تخصیص کیسے آئی؟ قام رجلن، رجلن تو اسی طرح نکرہ کا نکرہ ہے، کہتے ہیں معنی کے اعتبار سے تخصیص آ گئی، کس طرح؟ کہ جب آپ نے قام کہا، ابھی رجل آپ نے کہا نہیں، لیکن قام کہتے ہی سننے والے کو پتا چل گیا کہ آگے کوئی ایسی چیز آنے والی ہے جس پر یہ قام کا حکم لگانا صحیح ہے، جس پر آگے ابھی وہ چیز آئی تو نہیں لیکن کوئی ایسی چیز آنے والی ہے جس پر یہ قامہ کا حکم لگانا صحیح ہے. معلوم ہوا وہ آنے سے پہلے ہی، وہ جو رجل آنے والا تھا وہ پہلے ہی موصوف بن گیا. کیا موصوف کس چیز سے بنا؟ کہ اس پر قامہ کا حکم لگانا صحیح ہے. تو گویا آپ نے کہا قامہ رجلن، آپ نے کیا کہا قامہ رجلن، تو یہ رجلن آپ کو نکرہ نظر آ رہا ہے، نکرہ محض، لیکن یہ نکرہ محض نہیں، اس کے ساتھ اس کی صفت بھی آ چکی ہے. بھئی وہ صفت کیا؟ کہ بھئی یہ موصوف ہے، یعنی اس کی صفت یہ ہے کہ اس پر قامہ کا حکم لگانا صحیح ہے. یہ وہ موصوف ہے جس پر قامہ کا حکم لگانا صحیح. رجل عالم کا کیا معنی؟ یہ ایسا رجل ہے جو کہ عالم ہے. یہاں پر بھی جو رجلن آیا قام رجلن کے اندر، یہ ایسا رجل ہے کہ موصوف ہو رہا ہے کس چیز کے ساتھ؟ کہ اس پر قیام کا حکم لگانا صحیح ہے. قیام کے ساتھ موصوف نہیں ہو رہا، اس پر قیام کا حکم لگانا صحیح ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر سنو، میں کہنا چاہتا ہوں قام رجلن، اور رجلن تو نکرہ محض ہے، اور نکرہ محض پر تو حکم لگانا اور اس کو مسند الیہ بنانا صحیح نہیں. تو نحوی حضرات کیا فرماتے ہیں کہ جب جملہ فعلیہ کے اندر جیسے ہی فعل ذکر کیا جاتا ہے، جیسے ہی فعل ذکر کیا جاتا ہے، سننے والے کو فوراً پتا چل گیا کہ آگے ایک ایسی چیز آنے والی ہے جس پر یہ قیام کا حکم، یہ قامہ کا حکم لگانا صحیح ہے. جس پر قامہ کا حکم لگانا صحیح ہے، معلوم ہو قامہ کہتے ہی اس کی صفت آ گئی. اور کیا صفت؟ مثلا آگے میں رجلن لایا، اب یہ رجلن دیکھنے میں تو اکیلا ہے لیکن حقیقت میں اس کے ساتھ اس کی صفت بھی ہے، اس میں تخصیص آ چکی ہے. کیا صفت ہے؟ یہ وہ چیز ہے، رجل یہ وہ چیز ہے جس پر قامہ کا حکم لگانا صحیح. یوں کہو یہ رجلن یہ ایسی چیز ہے کہ موصوف ہو رہی ہے اس بات کے ساتھ کہ اس پر قامہ کا حکم لگانا صحیح ہے. یا دوسری مثال لے لو، اکلا رجلن، اکلا رجلن، جب میں نے اکلا کہا اس سے فوراً پتا چل گیا آگے کوئی ایسی چیز آنے والی ہے جس پر یہ عقل کا حکم لگانا صحیح ہوگا. تو وہ موصوف ہے، وہ موصوف ہے کس چیز کے ساتھ؟ کہ اس پر عقل کا حکم لگانا صحیح. تو دیکھو گویا کلام یوں بن گیا، قام رجلن کو دیکھیں، قام رجلن دیکھنے میں تو یہ رجلن ہے لیکن آگے صفت بھی ہے. کیسے؟ قام رجلن موصوفن، کھڑا ہوا ایسا آدمی جو موصوف ہے. بھئی کس چیز کے ساتھ موصوف ہے؟ کہ اس پر قیام کا حکم لگانا صحیح ہے، اس کے ساتھ یہ موصوف ہے. بھئی تو دیکھو فاعل کے اندر اس طرح تخصیص آ جاتی ہے. تو آپ کو اب بتلائیں گے کہ شرن احر رضا نابن، اس کے اندر بھی تخصیص آ گئی جس طرح فاعل میں تخصیص آتی ہے. توجہ ہے ذرا اس جملے پہ نظر رکھو، شرن احر زانابن، اس کے اندر کہتے ہیں یہ جو شرن شروع میں آیا یہ اس کے اندر تخصیص آ گئی. کس طرح تخصیص آئی؟ کہتے ہیں جس طرح فاعل میں تخصیص آتی ہے. جس طرح بھئی فاعل میں کیسے تخصیص آتی ہے؟ میں نے ابھی بیان کیا، جس طرح فاعل میں تخصیص آتی ہے اس شرن میں بھی تخصیص آ گئی. بھئی کیسے تخصیص آ گئی؟ فاعل کے اندر فعل پہلے ہوتا ہے اور فاعل بعد میں، اور یہاں پر تو شرن پہلے ہے اور احرہ فعل بعد میں ہے، تو اس کے اندر فاعل کی طرح تخصیص کیسے آ گئی؟ کہتے ہیں بھئی یہ اصل میں مؤخر تھا، احرہ شرن تھا. کیا تھا؟ احرہ شرن، और जब अहर्रा फेल आया मालूम हुआ आगे कोई ऐसी जात आने वाली है जो किसके साथ मौसूफ है, एहरार के साथ मौसूफ, और वो हुआ जमीर है। तो शर्रुन तो फाइल नहीं, वो तो हुआ जमीर है, तो शर्रुन तो बदल बन रहा है। तो बात ये कि मैंने बतलाया आपको कि ये जो बदल होता है ये भी माना के एतबार से क्या है, फाइल है। मुबदल मिनहू पहले आता है और बदल बाद में, लेकिन ये जो मुबदल मिनहू होता है ये इसको सिर्फ वैसे ही तमहीद के तौर पर जिक्र किया जाता है, असल मकसूद आने वाला बदल होता है। तो असल मकसूद आगे आने वाला बदल होता है। तो जब शर्रुन मुअख्खर था, अहर्रा शर्रुन जानाबिन, इसके अंदर ये शर्रुन फाइल तो नहीं लफ्जों के एतबार से, लेकिन माना के एतबार से ये क्या है, फाइल है। और फाइल तख्सीस पा लेता है किसकी वजह से, फेल की वजह से। तो यहां पर भी अहर्रा शर्रुन जानाबिन, शर्रुन से पहले क्या आया, अहर्रा, तो इस शर्रुन ने उसकी वजह से तख्सीस हासिल कर ली। बात समझ में आ गई। अब देखिए किताब पर, देखिए भाई साहिब जामी और बेहतर अल्फाज के साथ इसकी वजाहत करेंगे। कहते हैं वह मिसलु कौलिहिम, और जैसे अरबों का यह कौल है, शर्रुन अहर्रा जानाबिन, शर ही ने भोंकवाया कुत्ते को, लितखस्सुसी ही बिमा यतखस्ससु बिहिल फाइलु, इसलिए क्योंकि इसने तख्सीस हासिल कर ली। किसने, शर्रुन ने। शरुन मुब्तदा बन रहा है और नकिरा है, और नकिरा तो मुब्तदा नहीं बन सकता, तो अब वो तख्सीस बयान करने लगे। कहते हैं लितखस्सुसी ही, बवजह तख्सीस पा लेने शर्रुन के, बीमा उस चीज के साथ, यतखस्ससु बिहिल फाइलु, जिसके साथ फाइल तख्सीस पा लेता है, तख्सीस हासिल कर लेता। भाई शर्रुन ने भी तख्सीस हासिल कर ली उसी चीज के साथ जिसके साथ फाइल तख्सीस हासिल कर लेता है, क्योंकि शर्रुन असल में क्या था, मुअख्खर था, यह फाइल माना के एतबार से फाइल था। तो कहते हैं लितखस्सुसी ही बिमा यतखस्ससु बिहिल फाइलु, बवजह इसके तख्सीस हासिल कर लेने के उस चीज के साथ जिसके जरिए फाइल तख्सीस हासिल करता है, लिशबही ही बिही, यहां शबह पढ़ना भाई, लिशिबही ही ना पढ़ना। मैंने आपको बतलाया था कि एक है शिबहुन और एक लफ्ज है शबहुन। शिबहुन का माना है मिसल, और शबहुन, शबहुन मस्तर है बमाने मुशाबहत के भाई, तो यहां पर भी ये मस्तर है, लिशबही ही बिही, इस वजह से कि इस शर्रुन की मुशाबहत है बिही उस फाइल के साथ। देखो सुनो भाई, किस कहते हैं ये जो शर्रुन इस जुमले के अंदर आया, इसने तख्सीस हासिल कर ली उसी चीज के जरिए जिसके जरिए फाइल तख्सीस हासिल करता है, फाइल तख्सीस हासिल करता है, लिशबही ही बिही, इस वजह से कि इस शर्रुन की मुशाबहत है फाइल के साथ। किसके साथ, फाइल, फाइल तो नहीं लेकिन ये मुअख्खर था या नहीं, और मुअख्खर लफ्जों में तो फाइल नहीं था लेकिन फाइल से बदल तो था, तो माना के एतबार से ये फाइल था, यानी फाइल के मुशाबे था। लिशबही ही बिही, इस वजह से कि फाइल के साथ इसकी मुशाबहत है, इज युस्ता मलुफी मौज़ई मा अहर्रा जाना बिन इल्ला शर्रुन, क्योंकि इसको इस्तेमाल किया जाता है फी मौज़ई मा अहर्रा जानाबिन इल्ला शर्रुन, मा अहर्रा जानाबिन इल्ला शर्रुन के मकाम में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो जुमला मतन में आया शर्रुन अहर्रा जानाबिन, इसको इस्तेमाल किया जाता है मा अहर्रा जानाबिन इल्ला शर्रुन के मकाम में, और मा अहर्रा जानाबिन इल्ला शर्रुन के अंदर तो मा और इल्ला है, और उनकी वजह से क्या आ गई, तख्सीस आ गई। मालूम हुआ कि तख्सीस के मकाम में शर्रुन अहर्रा जानाबिन को इस्तेमाल किया जाता है। भाई मा अहर्रा जानाबिन इल्ला शर्रुन, इसमें तो मा और इल्ला है, इसमें तो बात वाजे है, ये है ही किस लिए, तख्सीस के लिए, तो ये तख्सीस के मकाम में इस्तेमाल होता है, और तख्सीस ही के मकाम में शर्रुन अहर्रा जानाबिन भी इस्तेमाल होता है। मालूम हो इसके अंदर तख्सीस है भाई, इसके अंदर तख्सीस है। तो मा अहर्रा जानाबिन इल्ला शर्रुन, जिस मकाम पर यह इस्तेमाल होता है उसी मकाम पर शर्रुन अहर्रा जानाबिन भी इस्तेमाल होता है। और यह किस मकाम पर इस्तेमाल होता है मा अहर्रा जानाबिन इल्ला शर्रुन, यह तख्सीस के मकाम में इस्तेमाल होता है, तख्सीस बतलाने के लिए, क्योंकि इसमें मा और इल्ला है, तो शर्रुन अहर्रा जानाबिन भी इसी के मकाम में, यानी तख्सीस के लिए ही इस्तेमाल होता है। और देखो मा अहर्रा जानाबिन इल्ला शर्रुन, इसके अंदर ये जो शर्रुन है, शर्रुन है, देखो ये फाइल है, ये मा हर्फ नफी, अहर्रा फेल, जानाबिन मफूल, जानाबिन मफूल, इल्ला हर्फ इस्तिस्ना, शर्रुन ये अहर्रा के लिए फाइल। तो फेल अपने फाइल और मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। तो इसके अंदर देखो शर्रुन फाइल बन रहा है। तो कहते हैं जिस मकाम पर यह इस्तेमाल होता है यानी हसर और तख्सीस के लिए, उसी मकाम पर शर्रुन अहर्रा जानाबिन भी इस्तेमाल होता है, मालूम हो उसके अंदर भी इसी की तरह तख्सीस है। और इस जुमले के अंदर तो देखो इल्ला शर्रुन, ये शर्रुन क्या बन रहा था, फाइल था। क्या था, फाइल। और फाइल में कैसे तख्सीस आती है कि फाइल से पहले जब फेल को जिक्र कर दिया जाए तो वह फेल गोया उसकी सिफत बन गया, क्या बन गया है, क्योंकि उस पर उसका हुक्म लगाना सही है। तो जैसे फाइल के अंदर तख्सीस आ जाती है, इसी तरह शर्रुन अहर्रा जानाबिन इसके अंदर भी तख्सीस आ गई। क्या बात हुई, देखो मा हर्रा जानाबिन इल्ला शर्रुन, यहां शर्रुन के अंदर तख्सीस है और तख्सीस है और नीज यह शर्रुन फाइल है, तो इसी तरह शर्रुन अहर्रा जानाबिन इसके अंदर भी उसी की तरह तख्सीस है। जैसे मा अहर्रा जानाबिन इल्ला शर्रुन में शर्रुन के अंदर तख्सीस थी, क्योंकि वो किसके बाद था, इल्ला के बाद था और वो फाइल था, वो फाइल था। इसी तरह शर्रुन अहर्रा जानाबिन के अंदर जो लफ्ज शर्रुन आया इसके अंदर भी तख्सीस है, इसने भी उसी तरह तख्सीस हासिल कर ली जैसे मा अहर्रा जानाबिन इल्ला शर्रुन में, जैसे इसमें शर्रुन ने तख्सीस हासिल की। क्यों, क्योंकि वो फाइल है, क्या है, फाइल है। तो इसमें भी यहां इसने तख्सीस हासिल कर ली है। तो हासिल कलाम ये कि भाई ये जो मतन में आया शर्रुन अहर्रा जानाबिन इसके अंदर भी इसी तरह तख्सीस है जैसे तख्सीस मा और इल्ला के साथ आती है, यानी जैसे मा अहर्रा जानाबिन इल्ला शर्रुन के अंदर तख्सीस है, मा अहर्रा जानाबिन इल्ला शर्रुन के अंदर जिस तरह तख्सीस है और यह तख्सीस के मौके पर इस्तेमाल होता है, इसी तरह शर्रुन अहर्रा जानाबिन के अंदर भी तख्सीस है और यह तख्सीस के मौके पर इस्तेमाल होता है। और मा अहर्रा जानाबिन इल्ला शर्रुन इसके अंदर तो शर्रुन फाइल वाके हो रहा है, मा अहर्रा जानाबिन इल्ला शर्रुन के अंदर तो शर्रुन फाइल वाके हो रहा है। तो जैसे इस जुमले के अंदर फाइल यानी शर्रुन ने तख्सीस हासिल कर ली, इसी तरह शर्रुन अहर्रा जानाबिन के अंदर भी ये जो शर्रुन जिसको मुकद्दम किया गया इसने भी इस फाइल की तरह तख्सीस हासिल कर ली, इसने भी इस फाइल यानी शर्रुन की तरह तख्सीस। बात समझ में आ गई कि जिस तरह मा अहर्रा जानाबिन इल्ला शर्रुन के अंदर शर्रुन फाइल है और इसमें तख्सीस है, इसी तरह शर्रुन अहर्रा जानाबिन के अंदर जो शर्रुन है उसमें भी तख्सीस है। तो इसके अंदर तख्सीस आ गई जिस तरह फाइल के अंदर तख्सीस आती है, क्योंकि ये उस फाइल यानी शर्रुन के मुशाबे है। भाई किस तरह मुशाबे है कि ये शर्रुन अहर्रा जानाबिन भी तख्सीस के मौके पर इस्तेमाल होता है जिस तरह मा अहर्रा जानाबिन इल्ला शर्रुन तख्सीस के मौके पर इस्तेमाल होता है। भाई तो कहते हैं इज युस्तामलु फी मौज़ई मा अहर्रा जानाबिन इल्ला शर्रुन, इसलिए क्योंकि ये जो शर्रुन अहर्रा जानाबिन मतन में आया इसको इस्तेमाल किया जाता है मा अहर्रा जानाबिन इल्ला शर्रुन के मकाम में, वमा यतखस्ससु बिहिल फाइलु क़ब्ला ज़िक्रिही। अब बयान करने लगे हैं इन्होंने क्या कहा कि शर्रुन ने तख्सीस हासिल कर ली जिस तरह फाइल तख्सीस हासिल कर लेता है, और फाइल किस तरह तख्सीस हासिल कर लेता है, अब वो बयान करने लगे हैं। मैंने बयान कर दिया कि फाइल किस तरह तख्सीस हासिल करता है कि फाइल के अंदर जब फेल पहले जिक्र हो गया तो उसे पता चल गया कि आगे कोई ऐसी चीज आने वाली है कि जिस पर ये कियाम का हुक्म लगाना सही है, तो मालूम हो वो पहले ही मौसूफ हो चुका, उसमें पहले ही तख्सीस आ गई है। भाई कहते हैं वमा यतखस्ससु बिहिल फाइलु क़ब्ला ज़िक्रिही, और वो चीज जिसके जरिए फाइल तख्सीस हासिल कर लेता है क़ब्ला ज़िक्रिही अपने जिक्र से पहले ही, कामा रजुलुन मैंने कामा कहा अभी रजुल का जिक्र नहीं, यानी अभी फाइल का जिक्र नहीं हुआ, जिक्र से पहले ही फाइल में क्या आ गई, तख्सीस आ गई। ये माना है वमा यतखस्ससु बिहिल फाइलु क़ब्ला ज़िक्रिही, और वो चीज जिसके जरिए फाइल तख्सीस हासिल कर लेता है अपने जिक्र से पहले ही वो क्या है, कहते हैं हुआ से हतु कौनी ही महकूमन अलैहि ही बीमा उस निदा इलैहि, हुआ से हतु वो सही होना दुरुस्त होना किस चीज का, कौनी ही महकूमन अलैहि उसका महकूमन अलै होना, उसके महकुमुन अलैह होने का दुरुस्त होना, सही होना, भाई उस महकुमुन अलैह होना किस चीज के लिए? कहते हैं बीमा उस निदा इलेही, मां से मुराद फेल है, उस फेल के लिए उस निदा इलेही जिसका इसकी तरफ इस्नाद किया गया है। भाई कामा रजुलुन, रजुलुन की तरफ किस फेल का इस्नाद? कामा। तो जब कामा कहा तो इस कामा ने बतला दिया कि आगे कोई ऐसी चीज आने वाली है कि उसका इस मा उसनीदा इले, यानी ये जो कामा फेल जिसका इस्नाद किया जा रहा है उसका इस मा उसनीदा इले के लिए महकुमुन अले यानी मुस्नद इले बनना सही है। भाई तो कहते हैं हुआ सेहतु कौन ही महकुमन अले ही बीमा उसनीदा इले ही, और वो दुरुस्त होना किस चीज का दुरुस्त होना? कौन ही महकुमन अलैही, उसके महकुमन अलैह होने का दुरुस्त होना। भाई महकुमन अलैह है किस चीज के लिए? बीमा उस निदा इलेही, याद रखो ये बीमा उस निदा इलेही ये जार मजरूर है, ये जार मजरूर और ये मुतालिक है महकुमन से। ये जो पीछे आया ना महकुमन अलैही कि महकुमन अलैह है किसके लिए? महकुमन अलैह है बीमा उस निदा इलेही, उस फेल के लिए जिसका इसकी तरफ इस्नाद किया, जिस फेल का इस फाइल की तरफ इस्नाद किया जा रहा है इस फाइल का उस फेल के लिए महकुमुन अले होना सही है। भाई एक है महकुम बिही, एक होता है महकुमुन अले। कामा जैदुन, कामा जैदुन, इसमें कामा है महकुमुन बिही यानी कामा का हुक्म लगाया जा रहा है, जिस चीज का हुक्म लगाया जाए उसको महकुमुन बिही कहते हैं और जिस पर हुक्म लगाया जाए उसको महकुमुन अलै कहते हैं। और तो कामा रजुलुन, कामा का हुक्म लगाया गया और किस पर लगाया गया? रजुल पर, तो कामा हुआ महकुमुन बिही और रजुलुन क्या हुआ? महकुमुन अलै, जिस पर हुक्म लगाया गया। यानी यूं को दूसरे लफ्जों में ये जो मुस्नद बिही है इसका दूसरा नाम है महकुमुन बिही और जो मुस्नद इलै है उसका दूसरा नाम क्या है? महकुमुन अलै है, उस पर हुक्म लगाया गया है। तो जब मैंने कामा कहा तो ये कामा क्या है? महकुमुन बिही है, ये मा उसनीदा इलै है जिसका इस्नाद किया गया है। तो इस कामा ने बता दिया आगे एक ऐसी चीज आने वाली है कि उसका कामा के लिए महकुमुन अलै बनना सही है। कहते हैं वमा यतखससु बिहिल फाइल क़ब्ल ज़िक्रिही, और वो चीज जिसके जरिए फाइल तख़सीस हासिल कर लेता है अपने जिक्र से पहले ही, वह सिहतु कौनिही महकुमन अलैही, वो उसका महकुमन अलै होने का दुरुस्त होना। कि उसका महकुमन अलै होना दुरुस्त है, भाई किस चीज के लिए महकुमन अलै? बिमा उस नीदा इलेही, उस फेल के लिए जिसका इसकी तरफ इस्नाद किया गया है। फइन्नका इदा कुलता कामा, इसलिए क्योंकि जब आपने कामा कहा, देखो वही बात अब जिक्र करेंगे, कामा कहा और अभी रजुल नहीं कहा, तो कामा के कहते ही वो जो आगे आने वाला रजुल है वो क्या हो चुका? मौसूफ हो चुका, उसमें तख्सीस आ चुकी। فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ قَامَ, इसलिए क्योंकि जब आपने कामा कहा, उलिमा मिनहु, तो इस कामा से यह बात मालूम हो गई कि अन्नमा युज़करु बादहु, कि वो चीज जो इस कामा के बाद जिक्र की जाएगी, अम्रुन, वो एक ऐसी चीज है, यसिहु अन युहकम अलैहि बिल क़ियामि, कि सही है कि उस पर क़ियाम का हुक्म लगाया जाए। वो एक ऐसी चीज है कि सही है कि उस पर क़ियाम का हुक्म लगाया जाए। फ़इज़ा क़ुलता रजुलुन, फिर जब आपने रजुल कहा, फहुआ फी कुवती रजुलिन मौसूफिन बिसिहतिल हुक्म अलैहि बिल क़ियाम, तो वो इसी कुवत में है यानी इसी दर्जे में है जैसे कि रजुलिन मौसूफिन बिसिहतिल हुक्म अलैहि बिल क़ियाम, कि वो ऐसा रजुल है मौसूफिन, जो मौसूफ हो रहा है बिसिहतिल हुक्म अलैहि बिल क़ियाम, कि उस पर क़ियाम का हुक्म लगाना सही है, यानी उस पर क़याम का हुक्म लगाना सही है, इस बात के साथ मौसूफ हो रहा है वो रजुल। भाई तो कहते हैं फ़इदा कुलता रजुलुन, पस जब आपने रजुलुन कहा, तो फ़हुआ फ़ी कुव्वति रजुलिन मौसूफिन बिसिहतिल हुक्म अलैहि बिल क़ियामी, तो वो रजुलिन मौसूफिन बिसिहतिल हुक्म अलैहि बिल क़ियाम की कुव्वत में है, उसके दर्जे में है। बात समझ में आ गई, और इसका तर्जमा दोबारा सुन लो कि रजुलिन मौसूफिन बिसिहतिल हुक्म अलैहि बिल क़ियामी, कि वो ऐसा रजुल है जो मौसूफ हो रहा है कि उस पर क़ियाम का हुक्म लगाना सही है। वालम अन्नल मुहिर्रा लिल कल्बी बिन नुबाहिल मुताद, वालम, यहां से अब तख़सीस को बयान कर रहे हैं, शर्रुन अहर्रा ज़ानाबिन, شارحین کتے کو بھونکوایا ہے، اس کے اندر تخصیص ہے۔ بھئی کس طرح ہے اس کے اندر تخصیص؟ تو آپ کو بتلائیں گے یہاں تخصیص دو طرح سے ہو سکتی ہے، یہاں پر تخصیص دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ شارحین کتے کو بھونکوایا ہے، تو یہ جو کتے کا بھونکنا ہے اس کے اعتبار سے دو قسمیں بنیں گی، کیونکہ ایک کتے کا بھونکنا ہے معتاد، یعنی عادت کے موافق، یعنی عام عادتاً جیسے کتا بھونکتا ہے اعتدال کے درجے میں، تو یہ ہے نباح معتاد۔ نباح کا معنی کتے کا بھونکنا، بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ لفظ آگے آنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ جو کتے کا بھونکنا ہے یہ کبھی معتاد ہوگا اور کبھی غیر معتاد۔ تو معتاد کیا ہے؟ کہ اعتدال کے درجے میں کتا جیسے بھونکتا ہے، اور غیر معتاد کیا ہے؟ کہ بہت زیادہ بھونک رہا ہے کتا۔ بھائی تو معلوم ہوا یہ غیر معتاد ہے، عادتاً تو وہ اتنا زیادہ نہیں بھونکتا۔ بھائی تو معلوم ہوا یہ جو کتے کا نباح ہے اس کا بھونکنا جو ہے معتاد بھی ہو سکتا ہے اور غیر معتاد بھی۔ تو اس اعتبار سے تخصیص کی دو صورتیں یہاں بنیں گی۔ اگر یہ بھونکنے سے نباح معتاد مراد لیں تو اس اعتبار سے یہاں تخصیص دوسری طرح ہے، اور اگر نباح غیر معتاد کے اعتبار سے تخصیص یہاں مراد دی جائے تو وہ دوسرے طریقے سے ہے۔ بھائی پہلے نباح معتاد کو لے لیں۔ بھائی دیکھیے جو نباح معتاد ہے کتے کا عادت کے موافق بھونکنا، یہ خیر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، شر کی وجہ سے بھی، یہ کسی دشمن کے آنے پر بھی ہو سکتا ہے اور دوست کے آنے پر بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کتا عادتاً بھونکتا ہے، چاہے دوست آئے چاہے دشمن آئے، تو دوست کے آنے پر بھی بھونکتا ہے اور دشمن کے آنے پر بھی بھونکتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ جو نباح معتاد ہے یہ خیر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور شر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ دوست کا آنا خیر ہے، دشمن کا آنا شر ہے۔ تو لہذا یہاں پر تخصیص آئی کہ شر احر رزانا بن، شر ہی نے کتے کو بھونکوایا ہے، معلوم ہوا خیر کی نفی ہو گئی۔ بھئی دیکھیے نا، تخصیص کہتے ہیں کہ ایک چیز کے لیے ایک حکم کا اثبات ہے، یعنی یوں کہ مذکور کے لیے حکم کا اثبات ہے تو غیر مذکور سے حکم کی نفی ہے۔ مذکور کے لیے حکم کا اثبات ہے تو غیر مذکور سے حکم کی نفی، اور اگر مذکور کے لیے حکم کی نفی ہے تو غیر مذکور کے لیے حکم کا اثبات ہے، اس کو کہتے ہیں تخصیص۔ دیکھو مثال سے بات واضح ہوگی۔ مثلا آپ کا خیال ہے کہ زید اور عمر دونوں نے بکر کی پٹائی کی ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں ما ضربا بکرن الا عمرن، آپ کا کیا خیال تھا کہ زید اور عمر دونوں نے بکر کی پٹائی کی ہے، تو میں کیا کہتا ہوں ما ضربا بکرن الا عمرن، بکر کی پٹائی نہیں کی مگر صرف عمر نے، تو دیکھو میں نے اس پٹائی کی تخصیص کر دی عمر کے ساتھ کہ یہ پٹائی صرف کس نے کی ہے، عمر نے کی ہے۔ تو یہ تخصیص ہے، اور تخصیص کسے کہتے ہیں؟ مذکور کے لیے اس بات ہو تو غیر مذکور سے نفی۔ تو عمر کے لیے پٹائی کا اس بات ہوا تو زید سے پٹائی کی نفی ہو گئی، اس کو کہتے ہیں تخصیص۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کا کیا خیال تھا کہ زید اور عمر دونوں نے پٹائی کی ہے، تو اب ایسے موقع پر میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ صرف عمر نے پٹائی کی ہے، تو اب میں تخصیص والے الفاظ لے کر آؤں گا اور میں کہوں گا ما ضرب بکرن الا عمرن، کہ بکر کی پٹائی نہیں کی مگر عمر نے، یا دوسرے بامحاورہ ترجمہ کر لیں عمر ہی نے بکر کی پٹائی کی ہے، اور تو میں نے پٹائی کا اس بات کس کے لیے کیا؟ عمر کے لیے۔ تو مذکور کے لیے پٹائی کا اس بات، تو غیر مذکور سے کیا ہوئی؟ پٹائی کی نفی، کیونکہ یہاں تخصیص ہے، ما اور الا میں لے کر آیا ہوں۔ تو معلوم ہوا عمر نے پٹائی کی ہے، زید نے پٹائی نہیں کی۔ بھائی تو یہاں پر بھی شر احر زانابین، شر کے لیے بھونکوانے کا اس بات ہے تو کس چیز سے بھونکوانے کی نفی ہے؟ بھائی تو میں نے بتایا کہ اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو نباح معتاد ہوگا یا نباح غیر معتاد۔ نباح معتاد وہ شر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور خیر کی وجہ سے بھی۔ تو جب کہا گیا شر احر زانابین کہ شر ہی نے کتے کو بھونکوایا ہے، تو شر کے لیے تو بھونکوانے کا اس بات ہوا، تو نفی کس چیز سے ہوئی؟ خیر سے، یعنی خیر نے کتے کو نہیں بھونکوایا بلکہ کس نے بھونکوایا ہے؟ شر نے۔ یہ ہے تخصیص۔ تخصیص کسے کہتے ہیں؟ مذکور کے لیے اس بات ہے تو غیر مذکور سے نفی۔ تو یہاں شر کے لیے بھونکوانے کا اس بات، تو نفی کس سے ہے؟ تو بتلا دیا کہ نباح معتاد میں نفی کس سے ہے؟ خیر سے ہے، کہ خیر نے نہیں بھونکوایا بلکہ شر نے بھونکوایا ہے۔ تو گویا کلام یوں ہو گیا شر لا خیر احر رازانابین، کہ شر نے نہ کہ خیر نے کتے کو بھونکوایا ہے۔ तो शर के लिए एहरार का सबूत है तो खैर से एहरार की नफी है, इसको कहते हैं तख्सीस। ये किस सूरत में है? नुबाह मुआताद में, जब कुत्ता आदत के मुआफिक भौंक रहा हो भाई। और अगर नुबाह गैर मुआताद है, आदत के मुताबिक कुत्ता नहीं भौंक रहा, बहुत ज्यादा भौंक रहा है, ये तो फिर सिर्फ शर ही की सूरत में हो सकता है। किस सूरत में? शर ही की सूरत में हो सकता है, तो इसमें तो फिर खैर का इहतमाल ही नहीं है। फिर यहां तख्सीस कैसे आई? नुबाह मुआताद में तो आपने शर के लिए भौंकवाने का इस बात किया, तो खैर से क्या हो गई? भौंकवाने की नफी, वहां तो तख्सीस समझ में आ जाती है। लेकिन जब कुत्ता नुबाह गैर मुआताद करे, वहां तो शर ही शर है, वहां तो खैर नहीं। और तख्सीस तो किसे कहते हैं? कि मजकूर के लिए इस बात हो तो गैर मजकूर से नफी, तो शर के लिए तो भौंकवाने का इस बात हो रहा है, नफी किससे होगी? यहां तो खैर की से नफी कर नहीं सकते, क्योंकि यहां तो खैर का इहतमाल ही नहीं है भाई। तो उसका जवाब देंगे साहिब जामी कि भाई अगर नुबाह गैर मुआताद हो तो फिर इस सूरत में यहां सिफत मुकद्दर मान लेंगे। शर्रुन ऐ शर्रुन अजीमुन, कि शर्र अजीम ही ने कुत्ते को भौंकवाया है, ला शर्रुन हकीरुन, किसी शर्र हकीर ने नहीं भौंकवाया। तो यहां सिफत मुकद्दर मान लेंगे, या शर्रुन के अंदर जो तनवीन है उसको ताजीम के लिए ले लेंगे। याद रखो ये जो तनवीन आती है बलागत के अंदर, आप पढ़ेंगे कि कभी ये तनवीन ताजीम के लिए आती है, कभी तहकीर वगैरह और मानी के लिए आती है, तो शर्रुन के अंदर भी आखिर में तनवीन आ रही है। तो सिफत को मुकद्दर मानने की जरूरत ही नहीं है, इस तनवीन को किस लिए बना लें? ताजीम के लिए। तो इसका माना क्या हो गया? शर्रुन अजीमुन। तो शर्रुन अहर्रा जानाबिन, जब नुबाह गैर मुआताद में हो तो फिर इस सूरत में, फिर इस सूरत में सिफत यानी मुकद्दर मान लेंगे, या ये तनवीन को ताजीम के लिए बना लेंगे, और माना क्या हो जाएगा? शर्रुन अजीमुन अहर्रजा नाबिन, शर्र अजीम ने कुत्ते को भौंकवाया है। ये तो मजकूर के लिए इस बात हुआ, और गैर मजकूर से नफी भी तो करनी है। तख्सीस किसे कहते हैं? मजकूर के लिए इस बात हो तो गैर मजकूर से नफी, तो फिर नफी किससे है? कहते हैं नफी शर्र हकीर से हो गई। शर्र अजीम ही ने कुत्ते को भौंकवाया है, शर्र हकीर ने नहीं भौंकवाया भाई। बात समझ में आ गई। अब देखिए किताब पर कहते हैं वालम, तू जान ले अनल मोहिर लिल कल्बी अहर्र युहिर्र इहरार से यह मोहिर इसमें फाइल है। वालम तू जान ले कि अनल मोहिर लिल कल्बी, वो जो कुत्ते को भौंकवाने वाला है, बिन नुबाहिल मुअतादी, नुबाह मुअताद के साथ यानी आदत के मुताबिक भौंकने के साथ, कद यकून खैरन, वो कभी खैर होती है, कमा इजाकान मजी अहबीबिन मसलन, जैसे कि हबीब का आना मिसाल के तौर पर, हबीब दोस्त वगैरह का आना ये खैर की वजह से भी भौंकना हो सकता है, वकद यकून शर्रन, और कभी कभार वो भौंकवाने वाला नुबाह मुअताद के अंदर वो शर होगा, कमा इजाकान मजी अदुविन, जैसे कि दुश्मन का आना, दुश्मन का आना क्या है? शर। तो ये जो नुबाह मुअताद है इसके अंदर जो कुत्ते को भौंकवाने वाली चीज है वो खैर भी हो सकता है जैसे दोस्त का आना, और शर भी हो सकता है जैसे दुश्मन का आना। वल मोहिर र लहू, ये वल मोहिर का आतफ उसी पीछे जो अनल मोहिर र आया था उसी पर आतफ करें। वल मोहिर र लहू बिनुबाहिन गैर मुअतादिन, और वो चीज जो भौंकवाने वाली है कुत्ते को नुबाह गैर मुअताद के साथ, युतशा अमु बिही, उससे बदफाली ली जाती है। युतशा अमु बिही का माना है बदफाली लेना, बदशुगुनी लेना, यानी एक चीज को अच्छा न समझना। कुत्ता बे इंतहा ज्यादा भौंक रहा है तो इसे बदफाली मुराद दी जाती है, बदशुगुनी इसको समझा जाता है कि मालूम हुआ कोई अच्छी बात नहीं, कोई खतरे की बात है, इसीलिए ये इतना ज्यादा भौंक रहा है। तो ये माना है वल मुहिर लहू बिनुबाहिन गैर मुअतादिन युतशाअम बिही, और वो चीज जो उसको भौंकवाने वाली है नुबाह गैर मुअताद के साथ, युतशाअम बिही, उसे बदफाली मुराद ली जाती है, फयकूनु शर्रन ला खैरन, तो इस सूरत में वो शर ही होगा, ला खैरन खैर नहीं होगा वो जो भौंकवाने वाला है। फअलल अव्वली यसहुल, तो अब दो सूरतें जिक्र हो गई, एक नुबाह मुअताद उसमें शर और खैर दोनों का इहतमाल, और एक नुबाह गैर मुअताद उसमें सिर्फ शर ही शर है। फ़अलल अव्वली, तो पहली सूरत पर यानी जब नुबाह मोताद हो। यसिहुल कसरू, कसर सही है। कसर क्या माना? तख़सीस। भाई मैंने बताया हसर कसर और तख़सीस सबका एक ही माना है। तो पहली सूरत पर जब नुबाह मोताद हो, यसिहुल कसरू बिन निस्बती इलल खैरी, तख़सीस सही है खैर की तरफ निस्बत करते हुए, क्योंकि शर्रुन अहर्रजाना बिन कहा है, तो शर के लिए भोंकवाने का सबूत है, तो किससे भोंकवाने की नफी हो गई? खैर। तो यहां कसर सही है खैर की तरफ निस्बत करते हुए, यह माना है। फ़अलल अव्वली, तो पहली सूरत में यानी नुबाह मोताद में यसिहुल कसरू, तख़सीस सही है बिन निस्बती इलल खैरी, खैर की तरफ निस्बत करते हुए। फमानाहु, तो माना कलाम का यह होगा, शर्रुन ला खैरुन अहर्रजा नाबिन, के शर ने ना के खैर ने कुत्ते को भोंकवाया। वह अलसानी, और दूसरी सूरत में यानी जब नुबाहे गैर मोहताद हो, ला यसे हो, कसर सही नहीं, क्योंकि वहां तो खैर का एहतमाल ही नहीं, तो कहते हैं फयुकद्दरु वस्फुन, तो वहां वसफ मुकद्दर होगा। हत्ता यसिहल कसरु, यहां तक कि कसर सही हो जाए, वहां सिफत निकाल लेंगे ताकि कसर सही हो जाए, मजकूर के लिए इस बात हो तो गैर मजकूर से नफी हो जाए। फयकूनुल माना, तो माना होगा शर्रुन अजीमुन ला हकीरुन अहर्रजा नाबिन, के अजीम शर ने न के हकीर ने अहर्रजा नाबिन कुत्ते को भोंकवाया। अजीम शर ने कुत्ते को भोंकवाया न के हकीर शर ने। कहते हैं वहादा मसलुन युज़रबु लिरजुलिन कवीयिन अदरकहुल इज्जु फी हादिसतिन, और ये ज़रबुल मसल है, बयान कर रहे हैं साहिबे जामी कि ये कलाम किस मौका पर किया जाता है। तो बतला रहे हैं कि ये जो शर्रुन अहर्रा जानाबिन आया, ये जरबुल मसल है अरबी जुबान में, और ये उस मौका पर बोलते हैं जब कोई बड़ा ताकतवर आदमी हो और किसी मामले के अंदर वो आजिज आ जाए, वो काम न कर सके। मसलन बड़ा ताकतवर आदमी है भाई, माल और दौलत भी है, गुलाम और खादिम भी बहुत ज्यादा हैं, वो जो काम चाहता है कर लेता है, ताल्लुकात भी हैं, लेकिन किसी मामले के अंदर वो भी आजिज आ गया, कुछ ना कर सका, तो उस वक्त लोग कहते हैं शर्रुन अहर्रा जानाबिन। बात समझ में आ गई? इतना ताकतवर आदमी है लेकिन ये भी इस मामले में आजिज आ गया भाई। नीस, इसी तरह ये कलाम इस्तेमाल किया जाता है जब किसी बड़े खतरे के आसार नमूदार हो भाई, जब बड़ा खतरा नमूदार हो भाई, तो उस मौके पर भी ये कहा जाता है कि शर्रुन अहर्रजा नाबिन, शर ही ने कुत्ते को भोंकवाया है, शर ही ने, यानी कोई बहुत बड़ा खतरा जाहिर होने लगा है, तो माना होगा मुहतात रहो, यानी एहतियात करो, कोई बड़ा खतरा जाहिर होने वाला है, कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, तो उस मौके पर कहते हैं शर्रुन अहर्रा जानाबिन। और माना क्या है? यानी मोहतात रहो, शर अजीम ही ने कुत्ते को भोंकवाया है, कोई बड़ा शर आने वाला है, लिहाजा एहतियात करो, ख्याल रखो। बात समझ में आ गई? तो यहां साहिबे जामी ने अहर्रा का माना क्या किया? कुत्ते का भोंकना। और ये भोंकना क्या है? मोहताद भी हो सकता है और गैर मोहताद भी हो सकता है। जबकि बाज दीगर उलमा ने लिखा है कि अहर्रा हरीर से है, और हरीर जो है ये कुत्ते के जो आम भोंकना है उसको हरीर नहीं कहते, बल्कि खास एक चीखने की आवाज कुत्ता निकालता है जब कोई इतना बड़ा फितना जाहिर हो जाए जिसका मुकाबला कुत्ता न कर सके, तो वो एक चीखने जैसी आवाज निकालता है, उसको हरीर कहते हैं। ये आम भौंकने को हरीर नहीं कहते, ये बाज़ उलमा जिक्र फरमाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई छोटा कुत्ता है और बड़ा कुत्ता उस पर हमला आवर होता है, तो वह छोटा कुत्ता मुकाबला नहीं करता, वह चीखता हुआ भागता है भाई। ये जो चीखने की आवाज है इसको हरीर कहते हैं, और ये कुत्ता सिर्फ उसी वक्त निकालता है जब कोई इतना बड़ा शर उसके सामने आ जाए जिसका वो मुकाबला ही नहीं कर सकता, तो वो चीखता हुआ भागता है भाई। या जैसे कोई कुत्ता हो और कोई शख्स उसको पत्थर उठाकर मारे, अब वो कुत्ता भी चीखता हुआ भागता है, तो वो जो चीखने की आवाज है उसको हरीर कहते हैं। तो हरीर से अगर ये वो खास आवाज मुराद ली जाए चीखने वाली, तो ये तो कुत्ता उसी वक्त निकालता है जब कोई बड़ा शर हो जिसका मुकाबला वो न कर सके। शारही ने कुत्ते को भौंकवाया, यानी उसको चीखने पर मजबूर कर दिया है, तो लोग कहते हैं एहतियात करो, यानी इतना बड़ा शर है कि जिसका मुकाबला करना मुश्किल है, मुहतात रहो भाई। आगे देखिए, वह मिसलु कौली का फिदारी रजुलुन, और जैसे कि आपका यह कौल है फिदारी रजुलुन, उस घर में कोई आदमी है, फिदार यह खबर है मुकदम और रजुलुन यह मुबतदा मुअख्खर, इबारत पर नजर है फिदार खबर मुकदम और रजुलुन मुबतदा मुअख्खर, और रजुलुन नकेरा महज है, और नकेरा महज का तो मुबतदा बनना सही नहीं। तो याद रखो, आपको साहिबे जामी बतलाएंगे कि यहां पर रजुल के अंदर तख्सीस आ गई तकदीम खबर की वजह से, किसकी वजह से कि खबर मुकदम हो गई, उसकी वजह से रजुल में तख्सीस आ गई, जैसे फाइल के अंदर तख्सीस आती थी, कैसे, जब मैंने कामा कहा तो इससे पता चल गया कि आगे कोई ऐसी चीज आने वाली है जिस पर कयाम का हुक्म लगाना सही है। यहां पर भी इसी तरह फिदारी रजुलुन, इसमें अब जब फिदार कहा, खबर पहले आई तो इससे पता चल गया कि आगे कोई ऐसी चीज आने वाली है जिस पर फिदार का हुक्म लगाना सही है, जिस पर फिदार का हुक्म लगाना सही है, लिहाजा उसके अंदर तख्सीस आ गई। तो यह तख्सीस का पांचवां तरीका है और इसका नाम है तख्सीस बि तकदीमिल खबर, खबर की तकदीम की वजह से नकेरा में तख्सीस। बात समझ में आ गई, क्योंकि आपने पढ़ा है तकदीमु मा हकुहुत ताखीर युफीदुल हसरा वल कसरा व तख्सीसा, तो फिदार को मुकदम किया गया, उसकी वजह से रजुल के अंदर तख्सीस आ गई भाई। तो कहते हैं वह मिसलु कौली का फिदारी रजुलुन ली तखस्सुसी ही बितकदीम खबरी, बवजह इसके तख्सीस पा लेने के तकदीम खबर की वजह से, ये जो रजुल है इसने तख्सीस हासिल कर ली बितकदीम खबर, किसकी वजह से, तकदीम खबर की वजह से, ली अन्नहु ईदा कीला, इसलिए क्योंकि जब कहा गया फिदार, खबर पहले ले आए, अभी मुब्तदा नहीं आया, लेकिन जब कहा गया फिदार उलीमा, तो यह बात मालूम हो गई कि अन्नमा युज़करु बादहु, कि वो चीज जो इसके बाद जिक्र की जाएगी मौसूफ़ुन बिसिहत इस्तिकरारिही फिदारी, वो मौसूफ है किस चीज के साथ, बिसिहत इस्तिकरारिही, इस्तिकरार का माना करार पकड़ना भाई, यानी होना होना भाई, याद रखो ये अफ़ाले आम्मा में से है, अफ़ाले आम्मा कौन से हैं, कौन, वजूद सबूत हुसूल और इसी तरह इस्तिकरार, ये भी किस में से है, अफ़ाले आम्मा में से, और अफ़ाले आम्मा का क्या माना था, होना, कौन सबूत वजूद हुसूल इस्तिकरार, सब का माना है होना। तो जब फिदार कहा गया, मालूम हुआ आगे कोई ऐसी चीज आने वाली है जिसका घर में इस्तिकरार सही है, यानी जिसका घर में होना सही है, बात समझ में आ गई, तो इस्तिकरार का क्या माना, होना भाई, होना होना भाई। तो कहते हैं जब फिदार जिक्र किया गया होलीमा, तो यह जान लिया गया कि अन्नमा युज़करु बादहु, कि वो चीज जो इस फिदार के बाद जिक्र की जाएगी मौसूफ़ुन बिसिहत इस्तिकरारिही फिदारी, वो मौसूफ है बिसिहत, इस बात के सही होने के साथ, किस बात का सही होना, इस्तिकरारिही फिदारी, उसका घर में होना, कि उसका घर में होना सही है, इसके साथ वो मौसूफ है। फहुआ फी कुव्वति तखस्सुसी बिसिफति, तो ये इसी कुव्वत में हुआ, जैसे कि तख्सीस हासिल करना सिफत की वजह से, तो जैसे सिफत की वजह से तख्सीस आ जाती है, वला अब्दुन मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन, या अब्दुन के अंदर तख्सीस आई किसकी वजह से, सिफत की वजह से, तो यहां पर भी ये फिदार पहले आ गया, तो इसने आगे आने वाले रजुल या आगे आने वाले नकेरा में तख्सीस पैदा कर दी, जिस तरह सिफत जो है मौसूफ के अंदर तख्सीस पैदा कर देती है। ये माना है फहुआ फी कुव्वति तखस्सुसी बिसिफति, तो ये तखस्सुस बिसिफत के दर्जे में है। वह मिसलु कौलिका सलामुन अलैका, और जैसे कि आपका यह कौल है सलामुन अलैका, यह तख्सीस का छठा तरीका आ गया भाई, ये तख्सीस का यह तरीका, इसका नाम है तख्सीस बिन निस्बति इलल मुतकल्लिमी, इसका क्या नाम है, तख्सीसुन बिन निस्बति इलल मुतकल्लिमी, यानी ये तख्सीस है उस निस्बत की वजह से जो मुतकल्लिम की तरफ की जा रही है। तख्सीस का पहला तरीका क्या था, तख्सीस बिसिफत, दूसरा तरीका तख्सीस बिइल्मिल मुतकल्लिम, तीसरा तख़सीस बिल उमूम, चौथा तख़सीस बिल उदूल मिनल जुमलतिल फ़िअलियति इलल जुमलतिल इस्मिया। देखो शर्रुन अहर्रा ज़ानाबिन, पहले क्या था अहर्रा शर्रुन ज़ानाबिन, जुमला फेलिया था, फेल पहले था और फिर शर्रुन को मुकदम करके मुब्तदा बनाया गया तो जुमला इस्मिया बन गया। तो ये तख़सीस का कौन सा तरीका है, तख़सीस बिल उदूल मिनल जुमलतिल फ़िअलियति इलल जुमलतिल इस्मिया, कि जुमला फ़िअलिया से जुमला इस्मिया की तरफ उदूल करने की वजह से तख़सीस आ गई भाई। और पांचवा तरीका था तख़सीस बि तक़दीमिल ख़बर, और ये छठा तरीका है तख़सीस बि निस्बति इलल मुतकल्लिमी, कि तख़सीस आ गई उस निस्बत की वजह से जो मुतकल्लिम की तरफ की जा रही है। सलामुन अलैका, आप पर सलाम हो। याद रखो उलमाए नह फरमाते हैं कि सलामुन अलैका ये असल में था सल्लमतु सलामन अलैका, सल्लमतु सलामन अलैका, सल्लमतु फेल था और सलामन ये मफूल मुतलक था भाई। फिर सल्लमतु फेल को हजफ कर लिया गया तख़फीफ के लिए, क्योंकि सल्लमतु सलामन अलैका बड़ा लंबा कलाम है और सलाम तो हर एक को किया जाता है तो कसरत इस्तेमाल खिफत का तकाजा करती है, तो इस सल्लमतु को हजफ कर दिया गया तो क्या रह गया, सलामन अलैका रह गया। और यह सलामन का नसब बतला रहा है कि इसका फेल महजूफ है, यानी यह जुमला फेलिया है, यह जुमला फेलिया है। फिर इस सलामन को बदल दिया गया सलामुन की तरफ, इससे जुमला इस्मिया बना लिया गया ताकि यह दवाम और इस्तेमरार पर दलालत करे। भाई देखो याद रखो, एक है जुमला फेलिया, एक है जुमला इस्मिया। जुमला फेलिया जो है वो हदूस और तजद्दुद पर दलालत करता है, यानी हदूस और तजद्दुद का एक ही माना है, इसलिए मैं दोनों लफ्ज जिक्र कर रहा हूं। हदूस और तजद्दुद का माना है एक चीज का होना, पहले एक चीज नहीं थी और फिर हुई। जैसे जराबा जैदुन, जैद ने पिटाई की, देखो पहले जैद की जरब नहीं थी, फिर जैद ने पिटाई की और फिर वो पिटाई गुजर भी गई, तो इसमें देखो एक चीज का होना जिक्र किया गया कि पिटाई हुई, पिटाई की जैद ने, तवज्जो है। तो जुमला फेलिया किस पर दलालत करता है, हुदूस और तजद्दुद पर, एक चीज के होने पर कि पहले नहीं थी और फिर हुई और फिर गुजर भी गई। तो जुमला फेलिया किस पर दलालत करता है, हुदूस और तजद्दुद पर, यानी एक चीज के होने पर। और एक है जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया सिर्फ सबूत पर दलालत करता है, जैदुन कायमुन, क्या माना, जैद खड़ा है भाई, पहले भी खड़ा था या नहीं, या दूसरा जैद आलिम है, पहले भी आलिम था या नहीं, कुछ इसके अंदर जिक्र नहीं है, सिर्फ इतना बताया गया कि जैद के लिए आलिमुन की सिफत साबित है, जैद आलिम है, या जैदुन कायमुन, जैद के लिए कायमुन की सिफत साबित है। तो मुब्तदा के लिए खबर का सबूत होता है, यहां हुदूस नहीं होता। जुमला फेलिया में तो क्या था, हुदूस और तजद्दुद था, पहले एक चीज नहीं थी फिर हुई और फिर गुजर गई। और जुमला इस्मिया में क्या होता है, मुब्तदा के लिए खबर का सबूत होता है, पहले थी या नहीं थी यह इसके अंदर जिक्र नहीं होता। जैदुन कायमुन में जैद के लिए कायमुन का सबूत है कि वह कायम है, पहले भी कायम था या नहीं कोई जिक्र नहीं। तो जुमला फेलिया में हुदूस और तजद्दुद होता है और जुमला इस्मिया में सबूत होता है। फिर याद रखो कि जुमला फेलिया के अंदर हुदूस और तजद्दुद होता है लेकिन कभी वहां कोई करीना साथ मिल जाता है और फिर वो इस्तेमरार पर दलालत करता है। किस पर, इस्तेमरार का माना एक चीज का बार बार होना। जराबा जैदुन, इससे सिर्फ इतना पता चला कि जैद ने पिटाई की और वह पिटाई गुजर भी गई, पहले नहीं थी फिर हुई और फिर गुजर भी गई, इस्तेमरार नहीं है। और कभी कभार इस्तेमरार भी आ जाता है, क्या आ जाता है, इस्तेमरार का माना एक चीज का बार बार होना, लगातार होते चले जाना, इसको क्या कहते हैं, इस्तेमरार कहते हैं। जैसे देखो शब और रोज का गुजरना, शब और रोज गुजर रहे हैं और इस गुजरने में क्या है, इस्तेमरार है, क्या है, एक दिन गुजरा, फिर दूसरा दिन गुजरा, फिर तीसरा दिन गुजरा, फिर चौथा दिन गुजरा, दिन गुजरते ही चले जा रहे हैं और यह क्या है, इस्तेमरार है। तो ये जुमला फेलिया जो है वो हुदूस और तजद्दुद पर दलालत करता है लेकिन जब कभी कोई करीना वगैरह साथ मिल जाए तो फिर वो हुदूस और तजद्दुद के साथ साथ इस्तेमरार पर भी दलालत करता है। इस्तेमरार में भी होना है लेकिन एक दफा नहीं, लगातार मुसलसल होना, बार बार। मसलन जराबा जैदुन, इसके अंदर इस्तेमरार ले आए, क्या ले आए, यज़रिबु ज़ैदुन कुल्ला वक्तिन, जैद हर वक्त पिटाई करता है। अब देखो कुल्ला वक्तिन से क्या पता चला कि इसके अंदर इस्तिमरार है, और इस्तिमरार का क्या माना, जैद पिटाई करता है फिर पिटाई करता है फिर करता है, क्योंकि पिटाई में सबूत नहीं होता, पिटाई में होना है। आपने किसी चीज को मारा तो देखो जर्ब गुजर गई, फिर जर्ब लगाई जर्ब गुजर गई, तो उसमें बार बार एक चीज होती जा रही है और गुजरती जा रही है, होती जा रही है और गुजरती जा रही है, इसको कहते हैं इस्तिमरार। तो जुमला फेलिया हुदूस और तजद्दुद पर दलालत करता है, और इसके साथ कभी कोई करीना वगैरह मिल जाए तो फिर ये इस्तेमरार पर भी दलालत करता है, यानी एक चीज के बार बार और लगातार होने पर भी दलालत करता है। और जुमला इस्मिया जो है वो सबूत पर दलालत करता है कि मुब्तदा के लिए यह खबर साबित है, यह सिफत उसके लिए साबित है, और उसके साथ फिर कभी कोई करीना मिल जाए तो फिर वह दवाम पर दलालत करता है। किस पर? दवाम पर। एक चीज दाइमन दूसरी चीज के लिए साबित है। जुमला फेलिया के साथ करीना मिलता था वो इस्तेमरार पे दलालत करता था, बार बार होना, देखो होना वहां फिर भी है, बार बार एक चीज होती जा रही है और गुजरती भी जा रही है, और जुमला इस्मिया के अंदर गुजरना और होना नहीं है, बस एक चीज का दूसरी चीज के लिए सबूत है, और इसी में फिर कभी दवाम भी आ जाता है। मसलन मैं आपसे कहता हूं ज़ैदुन तवीलुन, ज़ैद लंबे कद वाला है। अब देखो जैदुन मुब्तदा है और तवीलुन उसके लिए खबर है, जुमला इस्मिया है, और जुमला इस्मिया किस पर दलालत करता है? सबूत पर, कि एक चीज दूसरी चीज के लिए साबित है, हमेशा है या हमेशा रहेगी या नहीं ये जिक्र नहीं, लेकिन सबूत है। फिर इसी के साथ करीना मिल गया, करीना क्या मिला कि देखो ये जो जिसका कद लंबा होता है वो उसके साथ दाइमन रहता है जब तक वो जिंदा है, ये तो नहीं कि कद कभी लंबा हो गया और कभी कद छोटा हो गया, तो लिहाजा ये जो खबर मैं तवीलुन लाया कि वो लंबे कद वाला है, इसके साथ एक और करीना मिल गया, आपको आपकी अकल ने बता दिया कि भाई जिसका कद लंबा होता है वो फिर इसी तरह कद लंबा ही रहता है, यानी उसके लिए दाइमन साबित रहता है। तो देखो जैदुन तवीलुन ये जुमला इस्मिया है और इसके साथ करीना भी मिल गया, तो अब यह सबूत के साथ साथ दवाम पर भी दलालत कर रहा है, दवाम पर भी। तो इस्तेमरार और दवाम में फर्क समझ में आया, इस्तेमरार में एक चीज का बार बार होना होगा और दवाम के अंदर बार बार होना नहीं बल्कि उसी सबूत के अंदर दवाम आ जाता है। ज़ैदुन तवीलुन, ज़ैद लंबे कद वाला, इसका ये माना नहीं कि कद का बार बार कभी छोटा हो रहा है कभी बड़ा हो रहा है कभी छोटा, नहीं होना नहीं है, इसमें उसी सबूत के अंदर दवाम आ गया। तो इस्तेमरार और दवाम अलग अलग चीजें हैं, लेकिन याद रखो ये एक दूसरे की जगह भी इस्तेमाल हो जाते हैं, कभी इस्तेमरार बोलकर दवाम मुराद ले लेते हैं और कभी दवाम बोलकर इस्तेमरार मुराद ले लेते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, बात चल रही थी सलामुन अलैका, तवज्जो है, ये असल में क्या था, सल्लम तु सलामन अलैका, फिर सल्लम तु को हजफ कर लिया गया तो क्या बन गया, सलामन अलैका बन गया, और सलामन का नसब क्या बतला रहा है कि यह जुमला फेलिया है, और जुमला फेलिया किस पर दलालत करता है, हुदूस और तजद्दुद पर, तो इसको फिर सलामुन बना दिया गया ताकि यह सबूत और दवाम पर दलालत करे, किस पर, सलामुन अलैका, तो अब ये इसमें सबूत आया और नीज ये दुआ है तो इसमें दवाम इसके मुनासिब है, तो दवाम के लिए इसको जुमला इस्मिया की तरफ बदल दिया गया। देखो एक है सलामन अलैका, क्या माना, आप पर सलामती हो मेरी तरफ से, यानी मैं आपके लिए ये दुआ करता हूं कि आप पर अल्लाह ताला सलामती नाजिल फरमाए, तो देखो सलामती अल्लाह की तरफ से आए और गुजर जाए ये पसंदीदा है, या सलामती इस्तेमरार और दवाम के साथ आपके लिए हो ये पसंदीदा है, इस्तेमरार और दवाम के साथ हो वो सलामती पसंदीदा है, इसलिए इस सलामन अलैका जुमला फेलिया को बदल दिया किसके साथ, सलामुन अलैका जुमला इस्मिया की तरफ, ताकि ये इस्तेमरार और दवाम पर दलालत करे। बात समझ में आ गई? तो यहां पर सलामुन अलैका इसके अंदर तख्सीस आई, किसकी वजह से तख्सीस आई, मुतकल्लिम की तरफ निस्बत करने की वजह से, कि यह सलामती भेजने वाला कौन, यह दुआ करने वाला कौन है, मुतकल्लिम है कोई और नहीं है भाई। तो कहते हैं वह मिसलु कौली का, और जैसे कि आपका यह कौल है सलामुन अलैका, आप पर सलामती हो, लितखस्सुसी ही बिन निस्बती इलल मुतकल्लिमी, बवजह इसके तख्सीस हासिल कर लेने के, यानी ये सलामुन ने तख्सीस हासिल कर ली बिन निस्बती इलल मुतकल्लिमी, मुतकल्लिम की तरफ निस्बत करने की वजह से, इज असलुहु सल्लम तो सलामन अलैका, इसलिए क्योंकि इसकी असल जो है इस जुमले की सल्लम तो सलामन अलैका है, فحذف الفعل تو فعل کو حذف کر لیا گیا, وعدل الى الرفع اور عدول کیا گیا رفع کی طرف, یعنی سلاما علیکہ سے کیا بنا دیا گیا سلام علیکہ بنا دیا گیا, رفع کی طرف عدول کر لیا گیا یعنی نصب کو ختم کر کے رفع لے آئے. لقصد الدوام والاستمراری دوام اور استمرار کے ارادے سے, فکأنہ قال تو گویا کہ متکلم نے یوں کہا سلامی اے سلام من قبلی علیکا یعنی سلام ہو من قبلی میری طرف سے, علیکا آپ پر. دیکھو سلامی سلام کی نسبت کس کی طرف ہے؟ متکلم کی طرف. بتلایا نا یہاں تخصیص کس وجہ سے آئی؟ متکلم کی طرف نسبت سے. تو یہ سلام کی نسبت کس کی طرف ہے؟ متکلم. اسی لیے کہا فکأنہ قال گویا کہ متکلم نے کہا سلامی. اس پر اشکال ہوتا ہے سلامی سلام مضاف یا ضمیر مضاف الیہ, اور یا ضمیر تو معرفہ ہے ضمیر ہے, اور معرفہ کی طرف جو مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ. تو یہ سلامی تو معرفہ بن گیا. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں اس میں تخصیص ہے, اس کے اندر تو تعریف ہے بھائی, توجہ ہے. تو جواب دے رہے ہیں اے سلام من قبلی علیکا کہ نہیں بھائی یہاں تعریف نہیں ہے, سلامی متکلم کی طرف نسبت کی, معنی یہ ہے اے سلام من قبلی علیکا سلام من قبلی. دیکھو سلامی میں سلام کو مضاف بنایا اور یا ضمیر کو مضاف الیہ, تو کسی کے ذہن میں شبہ آ سکتا ہے کہ یہ تو معرفہ بن گیا, یہ کیا بن گیا معرفہ. تو آگے اس کی تفسیر پھر نکرہ کے ساتھ کر دی کہ نہیں بھائی یہ مراد ہماری نہیں ہے کہ یہ معرفہ ہو چکا ہے, بلکہ ہماری کیا مراد ہے کہ متکلم کی طرف نسبت ہے. دیکھو سلام من قبلی علیکا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آئے اور وہ کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو پھر وہ اس کے لیے صفت بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے. تو یہاں پر بھی دیکھو سلام من قبلی, سلام ان کے بعد من قبلی آیا تو یہ اس سلام ان کے لیے صفت بنے گا. اور جار مجرور کو براہ راست صفت بناتے ہیں یا متعلق سے جوڑیں گے؟ متعلق سے. تو گویا یہ کلام یوں ہے سلام ثابت من قبلی, ایسا سلام جو میری طرف سے ثابت ہے, علیکہ وہ آپ پر ہو. تو دیکھو یہ سلام موصوف اور ثابت من قبلی اس کی صفت. تو دیکھو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلام ابھی بھی نکرہ ہے. تو ہم نے جو سلامی کہا آپ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ معرفہ بن گیا ہے. تو کہتے ہیں فکأنہ قال تو گویا کہ متکلم نے یوں کہا سلامی اے سلام من قبلی علیکا کہ میرا سلام یعنی میری طرف سے سلام ہو, علیکا آپ پر. کہتے ہیں ھذا ھو المشہور فی ما بین النحات, کہتے ہیں یہی ہے جو مشہور ہے نحویوں کے درمیان. آگے صاحب جامی قیمتی بات بتلانے لگے ہیں, کہتے ہیں نحوی حضرات میں یہی بات مشہور ہے کہ نکرہ محض مبتدا نہیں بن سکتا, بلکہ نکرہ تب مبتدا بنے گا جب اس میں تخصیص پیدا کر دی جائے بھائی. تو کہتے ہیں ھذا ھو المشہور فی ما بین النحات, یہی مشہور ہے نحویوں کے درمیان کہ نکرہ بغیر تخصیص کے مبتدا نہیں بن سکتا. وقال بعض المحققین منهم, اور نحویوں میں سے بعض محققین وہ فرماتے ہیں کہ مدار صحة الاخبار عن النكرة على الفائدة, نکرہ سے خبر دینے کا صحیح ہونا, کہ نکرہ سے خبر دینا صحیح ہو, اس کا مدار جو ہے على الفائدة, اس کا مدار فائدے پر ہے. نکرہ سے خبر دینے کا مدار فائدے پر ہے, یعنی نکرہ سے خبر دینے میں اگر مخاطب کو کوئی فائدہ ہے, اس کو کوئی نئی بات معلوم ہو رہی ہے, فائدے سے کیا مراد, اس کو ایک نئی بات پتا چل رہی ہے, پھر تو نکرہ کو مبتدا بنانا اور اس سے خبر دینا صحیح ہے. نکرہ کو مبتدا بنانا اور اس سے خبر دینا صحیح ہے, کب؟ جب اسے مخاطب کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو. اور اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر نکرہ سے خبر دینا بھی صحیح نہیں. مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں رجل قام, کوئی آدمی کھڑا ہے, رجل نکرہ ہے مبتدا بنایا اور خبر کیا دی قام, کوئی آدمی کھڑا ہے, بھئی اس خبر دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اتنا تو ہر ایک کو پتا ہے کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی آدمی کھڑا ہوگا, تو رجل قام کہنے کا کوئی فائدہ ہوا سننے والے کو؟ نہیں. لہذا رجل قام کے ذریعے خبر دینا صحیح نہیں. ہاں بعض اوقات یہ خبر دینا صحیح جب اس کو فائدہ حاصل ہو, مثلا आपके साथी ने आपसे कहा कि मसलन देखो मेहमान आ गए या नहीं, आप बाहर निकले और आपने देखकर क्या कहा जी, आपने कहा रजुलन कामा, एक आदमी खड़ा है, देखा आज इसका उसको फायदा हुआ, उसके ख्याल में तो वहां कोई भी नहीं होगा, लेकिन आपने क्या खबर दे दी उसको, अब इसका क्या माना, पूरी दुनिया में कोई आदमी खड़ा है या उस जगह पर कोई आदमी खड़ा है, और इस बात का उसको पहले पता था पता नहीं था, लिहाजा आपका खबर देना सही। ये वैसे मिसाल के तौर पर मैंने समझाया, मतलब यह है कि नकेरा के जरिए जब किसी को खबर दी जाए तो फायदा कोई नहीं होता, लेकिन अगर फायदा हो रहा हो फिर नकेरा को मुब्तदा बनाना और उसके जरिए खबर देना सही है। तो रजुलुन कामा जब आप किसी से कहेंगे तो भाई इसका तो माना है कि कोई आदमी खड़ा है, और दुनिया में कोई ना कोई आदमी तो खड़ा ही है, हर एक को पता है कोई ना कोई आदमी खड़ा होगा, बल्कि सैकड़ों हजारों खड़े होंगे, तो रजुलुन कामा कहने का कोई फायदा नहीं, कोई नई बात उसको मालूम नहीं हुई, लिहाजा यह कहना सही नहीं। लेकिन अगर फायदा है, कोई नई बात उसको मालूम हो रही है, तो फिर नकेरा को मुब्तदा बनाना सही है। जैसे देखो आप देखते हैं आसमान पर कभी कोई सितारा टूटता है, एकदम एक लकीर सी रोशनी की बनती है, एक जलती हुई लकीर नजर आती है और फिर खत्म हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, सितारा टूटना, कि एक सितारा अभी टूट गया। तो अब मसलन आप एक शख्स से कहते हैं कौकबुन इनकज़ा असाता, कौकबुन सितारा, इनकज़ा या इनकज़ो के माने टूटना, असाता अभी, आप किसी जगह खड़े हैं और वहां आपकी अचानक आसमान पर नजर पड़ी और एक सितारा आपको एकदम टूटता हुआ नजर आया, तो आप फौरन अपने साथी को कहते हैं कौकबुन इनकज़ा असाता, अभी एक सितारा टूट गया, वो भी फौरन ऊपर की तरफ देखेंगे, देखेंगे या नहीं, क्यों, क्योंकि एक नई बात उनको मालूम हुई जो इससे पहले उनके इलम में नहीं थी, उनकी तो आसमान की तरफ तवज्जो ही नहीं थी। तो अब देखो कौकबुन नकेरा आप लाए और आपने इस नकेरा को मुब्तदा बनाया, कौकबुन इनकज़ा असाता, अभी एक सितारा टूट गया, लेकिन फायदा हुआ या नहीं, एक नई और या एक अनोखी बात सुनने वाले को मालूम हुई और वह फौरन मुतवज्जे भी हो गया उसकी तरफ भाई। तो लिहाजा हासिल कलाम क्या, वो बाज़ मुहक्किकीन फरमाते हैं कि नकेरा को मुब्तदा बनाने के लिए उसमें तख्सीस जरूरी नहीं है, बल्कि जहां पर भी नकेरा के जरिए खबर देने में कोई फायदा हो, फायदे का क्या माना, यानी मुखातब को एक नई बात उससे मालूम हो, तो फिर तो वहां नकेरा के जरिए खबर देना सही है, वरना नकेरा के जरिए खबर देना सही नहीं। तो नकेरा के लिए खबर देना सही, फिर आपको तफसीस वगैरह लाने की कोई जरूरत नहीं, बस अगर मुखातब को उससे फायदा है तो फिर नकेरा को मुब्तदा बनाना सही है भाई। तो कहते हैं वकाल बाजुल मुहक्किकीन मिनहुम, और बाज मुहक्किकीन जो है उन नहवियों में से उन्होंने फरमाया है कि मदारु सिहतिल इखबारी अनिन नकिरति, नकिरा से खबर के सही होने का दारो मदार अलल फाइदति, वो फायदे पर है, ला अला मा ज़करूहु मिन तख्सीसाति, न कि उस चीज पर वो जो इन्होंने तख्सीसात जिक्र की हैं उस पर फायदे का मदार नहीं, वो तख्सीसात अल्लती युहताज फी तौजीहातिहा, वो जो मोहताज है अपनी तौजीहात के अंदर, इला हादिही तकल्लुफात रकीकतिल वाहियती, अर रकीका और अलवाहिया का एक माना, रकीका और वाहिया का माना है कमजोर, कमजोर ज़ईफ भाई, तकल्लुफात, तकल्लुफ कहते हैं बनावटी बात, यानी बात बनाना, बात को बनाना, उसमें बनावट से काम लेना। कहते हैं देखो ये जो तख्सीसात आपने जिक्र की, इनमें से देखो बास के अंदर बनावट से काम लेना पड़ा, बात को बनाना पड़ा, जैसे शरुन अहर्रा जाना बिन, देखो इसके अंदर कितनी बात बनानी पड़ी कि असल में क्या था, अहर्रा शरुन जानाब था, फिर शरुन को क्या कर दिया गया, मुकदम कर दिया गया, देखो एक बात बनानी पड़ी। इसी तरह फिदारी रजुलुन, कि इसके अंदर भी तख्सीस कैसे आई कि जब फिदार पहले आया तो उसकी वजह से आगे आने वाले रजुल में क्या आ गई, तख्सीस आ गई, देखो एक बात वैसे ही बनानी पड़ी। इसी तरह अराजुलुन फिदारी अमीमरातुन, इसके अंदर भी बात बनानी पड़ी कि मुतकल्लिम को चूंकि इलम है इसलिए तख्सीस आ गई। तो इनमें से बाज के अंदर क्या करना पड़ता है, तकल्लुफात से काम लेना पड़ता है, कमजोर तकल्लुफात से काम लेना पड़ता है, उन तकल्लुफात से काम लेने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि जहां भी नकेरा से नकेरा को मुब्तदा बनाने में और उससे खबर देने में कोई फायदा हो तो उस नकेरा को बगैर तख्सीस के आप क्या कर सकते हैं, मुब्तदा बना सकते हैं। तो कहते हैं नकेरा से खबर देने का मदार फायदे पर है, ला अला मा ज़करूहु मिन तख्सीसात इल्लती युहताजु फी तौजीहातिहा इलाहादिही तकल्लुफातिर रकीकतिल वाहियती, नकिरा से खबर देने का मदार फायदे पर है, ला अलामा ज़करूहु मिन तख़सीसात, ना के वो जो तख़सीसात इन्होंने जिक्र की उन पर मदार नहीं है, वो तख़सीसात अल्लती युहताजु फी तौजीहातिहा, कि जो मोहताज हैं वो तख़सीसात जो मोहताज हैं अपनी तौजीहात के अंदर, इलाहाद ही तकल्लुफात रकीकतिल वाहियती, इन कमजोर तकल्लुफात के, ये तख़सीसात मोहताज हैं अपनी तौजीहात के अंदर, इन कमजोर तकल्लुफात के मोहताज हैं। तौजीह कहते हैं वजह जिक्र करना, क्या कहना, तो देखा इनके अंदर ये कमजोर तकल्लुफात के जरिए इनकी वजह बयान करना पड़ी कि यहां नकेरा क्यों मुब्तदा बन रहा है, यहां क्यों बन रहा है, यहां क्यों बन रहा है, तो कमजोर तकल्लुफात से काम लेकर इनकी तौजीहात जिक्र करनी पड़ी। फाला हाजा यजूजू, तो इस बिना पर जायज है, अयुकाल यूं कहा जाए, कौ कबुन इन कज़्ज़ासाता, एक सितारा अभी टूट गया, कौ कबुन इन कज़्ज़ा, कौ कबुन के आखिर में तनवीन है, नून है, नून साकिन है, और इन कज़्ज़ा के शुरू में हमजा वसल है, वो गिर गया, तो दोनों नून साकिन हैं, तो अव्वल को कसरा देंगे, कौ कबुन इन कज़्ज़ा सात, अभी एक सितारा टूट गया, ये कहना जायज है, लिहुसूल फाइदती, फायदा हासिल होने की वजह से, वला यजूज़ु अन युक़ाला, और ये कहना जायज नहीं है, रजुलुन क़ाइमुन, कि एक आदमी खड़ा है, लिअदमी ही, क्योंकि इसके अंदर कोई फायदे का हुसूल नहीं है, वहादल कौल अक़रबु इला सवाब, और ये वाला कौल जो है दुरुस्त बात के ज्यादा करीब है। साहिब जामी क्या फरमा रहे हैं कि ये वाला कौल दुरुस्त बात के ज्यादा करीब है, ये तकल्लुफात से काम लेने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि बात वही है कि जहां नकेरा से खबर देने में कोई फायदा हो तो वहां नकेरा को मुब्तदा बना सकते हैं, ये दुरुस्त बात के ज्यादा करीब है। मालूम हो वो जिन्होंने वो तख़सीसात जिक्र की वो भी गलत नहीं है, वो भी दुरुस्त बात के करीब, लेकिन ये वाली बात ज्यादा करीब है दुरुस्त के। भाई याद रखो, उलमाए नह फरमाते हैं कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर नकेरा महज मुब्तदा बन सकता है बगैर तख़सीस के, उनमें से एक मकाम में दुआ और बददुआ है, दुआ और बददुआ के मकाम में नकेरा मुब्तदा बन सकता है बगैर तख़सीस के, जैसे सलामुन अलैका ये दुआ है, तो इसमें सलामुन अलैका ये सलामुन मुब्तदा बन सकता है, इसमें किसी तख़सीस को तलाश करने की जरूरत नहीं। या इसी तरह मकाम में बददुआ हो, मसलन कोई शख्स किसी से कहता है वैलुन लका, तुम्हारे लिए हलाकत हो, तो ये वैलुन क्या है, बददुआ, तो ये भी मुब्तदा है और यहां भी किसी तख़सीस की जरूरत नहीं। तो एक मकाम में दुआ और बददुआ है, वहां भी नकेरा महज़ा मुब्तदा बन सकता है। इसी तरह ताज्जुब के मकाम में भी नकेरा महज़ा मुब्तदा बन सकता है, अजबुन लिज़ैदिन, ज़ैद पर ताज्जुब है, तो अजबुन देखो मुब्तदा है और नकेरा महज़ा है, तो ताज्जुब के मकाम में भी नकेरा महज़ा मुब्तदा बन सकता है। इसी तरह इज़ा मुफाजातिया है, उसके बाद भी नकेरा महज़ा मुब्तदा बन सकता है। इज़ा मुफाजातिया जो अचानक के माना में आता है, इसका माना क्या होता है, अचानक, खरजतु फइज़ा रजुलुन मौजूदुन, मैं निकला तो अचानक एक आदमी मौजूद था, तो देखो फइज़ा रजुलुन, इज़ा मुफाजातिया है और इसके बाद रजुलुन नकेरा मुब्तदा बन रहा है। और इसी तरह जब एक चीज की हकीकत मुराद हो तब भी नकेरा मुब्तदा बन सकता है, रजुलुन खैरुम मिनल मरअती, मर्द बेहतर है औरत से, यहां फर्द नहीं मुराद, हकीकत और माहियत और जिंस मुराद है, कि जिनसे रजुल जो है वो बेहतर है किसके मुकाबले में, जिनसे इमरा के मुकाबले में, यानी जिनसे रजुल को अल्लाह ने फजीलत नसीब फरमाई है। तो यहां देखो रजुल से रजुल के अफराद नहीं मुराद बल्कि जिंस और हकीकत मुराद है। तो ये तीन चार जगह मैंने जिक्र कर दी, इनको भी याद रखना कि उलमा फरमाते हैं कुछ जगह ऐसी हैं जहां नकेरा महज में मुब्तदा बन सकता है, जैसे ताज्जुब का मकाम है, दुआ और बददुआ का मकाम है, इज़ा मुफाजातिया के बाद है, और इसी तरह जब हकीकत और जिंस मुराद हो, अफराद मुराद ना हो, तो इन जगहों के अंदर भी नकेरा महज मुब्तदा बन सकता है। बात समझ में आ गई, चलिए बस भाई, हादा हुअल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।